الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال الصلاة والتسليم قوما لعبد يا له الله مفتاح للخير ومغلاق للشر أو كما قال الإسلام والتسليم. میرے عزیز و بھائیو دوستو بزرگو، ہمارا یہ سالانہ وارشک اجتماع ہے جو ہر سال ہوتا ہے، اس میں ہمارے ضلع کے سارے ساتھیوں کو بلانے کی پوری محنت اور کوشش ہوتی ہے. یہ جو ہمارا اجتماع ہے یہ کوئی رسمی پروگرام نہیں ہے، جیسے دنیا میں رسمی پروگرام ہوتے ہیں ایسے یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ ہم ایمان والوں سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں جس کے کیے بغیر اس ایمان والے کی نہ دنیا بہتر بن سکتی ہے نہ آخرت بہتر بن سکتی ہے. ان چیزوں کی یاد دہانی کے لیے، ان چیزوں کی فکر دلانے کے لیے. اچھا بھائی آپ اٹھ کر آ جاؤ، آ جاؤ اٹھو. او بھائی آپ سے کہہ رہے ہیں اٹھو نا، اجتماع میں آئے ہو اور سنتے بھی نہیں ہو، آگے بڑھو، ہم مل کر بیٹھو. جب بیٹھتا ہی ہے تو اندر آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ بھائی صاحب، آگے بڑھ جاؤ، آگے آ جاؤ بھائی، پیچھے والے بھی آگے آ جاؤ، آپ لوگ بھی آگے آ جاؤ، اٹھو بھائی جوان، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ بھائی. اچھا آ جاؤ، آپ سے کہہ رہا ہوں مجمع میں آ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ. ماشاء اللہ بھائی، وہ پیچھے والوں کو بھی ذرا لے لو، وہ پیچھے والوں کو بھی آ جاؤ. ماشاء اللہ یہاں آنے کو اچھا بناؤ، یہاں آنے کو اچھا ذرا بنا لو بھائی. وہ پیچھے چار بیٹھے ہیں، کالی ٹوپی والا، پانی پی رہا ہے، ایک بزرگ بھائی، آپ چاروں اٹھ جاؤ. ماشاء اللہ اچھا مسکرا رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ. ماشاء اللہ بھائی، ان کے پاس بھی چار پانچ کا ٹولا ہے، گرین ٹی شرٹ والا بھائی، آ جاؤ اٹھو اٹھو. آپ گرین ٹی شرٹ دیکھتے ہو کہ میرا گرین ہے کہ نہیں ہے؟ اٹھو. ہاں ابھی گرین ٹی شرٹ دیکھتا ہے وہ، آ جاؤ بھائی. اب یہ بیچ میں جو ٹولا بیٹھا ہے، یہ بمبو ایسا نہیں تمہارا چہرہ چھپا سکے، کھڑے ہو جاؤ بھائی. وہ بےچارا چہرہ چھپا رہا ہے بمبو کی آڑ میں، آ جاؤ آ جاؤ. اتنے اچھے ہو کر، اتنے موٹے تازے ہو کر وہاں بیٹھے ہو، آ جاؤ آ جاؤ. واہ 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 واہ، جی آپ آپ بھی آ جاؤ، چاروں وہاں بھی بیٹھتا ہے یہاں بھی بیٹھتا ہے، آ جاؤ آپ چاروں پانچوں بھی آ جاؤ، جو کرسی پر بیٹھے ہیں وہ اور ان کے بغل کے تینوں چاروں آ جاؤ آ جاؤ. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. ہاں بھائی جلدی جلدی آ جاؤ بھائی. یہ تین جوان کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کشمیر کی جماعت کے ساتھی ہے؟ جماعت والے ہو کر ایسا کرتے ہو، سب کو جوڑنے کا کام کرنے کا خود جوڑتے نہیں ہو. اٹھ کر آجے، آگے آگے بڑھو، ابھی تو اٹھنے کو تیار نہیں. جماعت میں آئے ہو تو پہلے بیٹھنا چاہیے، پیچھے بیٹھنا چاہیے، اور تب مجمع آ گیا ابھی پھر بھی تم نہیں اٹھتے ہو. ہاں بھائی وہ پیچھے بیٹھے ہیں کچھ آٹھ دس آدمی، دیکھو نا جو پیچھے دیکھتا ہے اسی کو کہہ رہا ہوں، زلفوں والے بھائی، کالے کرتے والے جو تم پیچھے دیکھ رہے ہو آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. اٹھے اٹھے، آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، آ جائیے آ جائیے. ماشاء اللہ بھائی وہ پیچھے دو چار بیٹھے والے ہیں، ہاں ماشاء اللہ اٹھ گئے. باہر مت جاؤ، اندر آؤ، باہر مت جاؤ، اندر آ جاؤ. ماشاء اللہ. اچھا بھائی آپ کیا کرو گے؟ یہ گلے میں چشمہ لٹکائے ہوئے جو بزرگ بیٹھے ہیں، ہاں آپ آ جاؤ آ جاؤ، سب آ جاؤ. اللہ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر دے، آ جاؤ. میں نے چشمہ اتارنے کو نہیں کہا، آپ کو آنے کو کہا ہوں، چشمہ تو رہنے دیں، ہمیں کوئی حرج نہیں. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. ماشاء اللہ واہ 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 واہ. मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो हमारा इज्तम है वो हर साल होता है और ये जो इज्तम होता है वो कोई फंक्शन नहीं है, बहुत सारे तंजीमों के सालाना फंक्शन होते हैं, ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, बल्कि हम ईमान वालों से मुताल्लिक कुछ जरूरी चीजें होती है जिसको हम सबको याद रखना होता है और उस पर पढ़ते हुए जिंदगी गुजारना होता है। पानी जरा दे देना। उस पर पढ़ते हुए जिंदगी गुजारना होता है और वो चीजें ऐसी है कि जब तक ईमान वाला उन चीजों को पूरा करते हुए नहीं जिएगा, अल्लाह की तरफ से ये बात फरमाई है कैसे ईमान वाले को अल्लाह सुख का चैन का जीना नसीब नहीं करेंगे। और अगर वो चीज उसने समझ ली, उन चीजों का पाबंद बन गया, तो अल्लाह की तरफ से वादा है कि ऐसे लोगों को हम खुशगवार जिंदगी देंगे, अच्छा जीना नसीब करेंगे। दुनिया में जब नबी थे तो नबी इन बातों को उम्मत को समझाते थे, फहमाइश करते थे। अब दुनिया में नबी नहीं है, पर्दा फरमा गए, तो इस दीन की मेहनत के रास्ते से एक एक की खुशामद की जा रही है, एक एक की मन्नत समाजत की जा रही है और उन बातों को समझाने की मेहनत हो रही है। क्यों? ताकि एक ईमान वाला वो अल्लाह के रहमो करम में आ जाए और जब तक जिए वो अच्छा जी सके। और जब वो मरे तो अल्लाह उसका मरना अच्छा कर दे। वो क्या चीजें हैं? तो वो चीजें ये है कि हर एक को ये ध्यान आ जाए कि अल्लाह हमसे ये चाहता है कि हम अपने जीवन में अल्लाह को दाखिल करके जीने वाले बने। हमें अल्लाह ने पैदा किया है, हमारे खालिक और मालिक अल्लाह है। जिस तरह अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमारी सारी जरूरियात भी अल्लाह ने पैदा की। भाई मुझे प्यास लगी है तो किसने लगाई? अल्लाह ने। और पानी को प्यास के बुझने का जरिया बनाया तो अल्लाह ने बनाया। अगर अल्लाह प्यास ना लगाते, वो कैफियत ना रखते तो कोई पानी ना पीता। किसी को लस्सी पीने की प्यास नहीं होती, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स पीने की प्यास नहीं होती, अल्लाह ने उसकी प्यास नहीं रखी। किसी को छाछ पीने की प्यास नहीं होती, अल्लाह ने पानी की प्यास रखी। जिस तरह औरों की जब प्यास अल्लाह ने नहीं रखी, अल्लाह चाहता तो पानी की प्यास ना रखता, लेकिन इस जिस्म के लिए पानी जरूरी है तो अल्लाह ने उसकी प्यास रखी ताकि आदमी पिए। फिर उसके बूझने के लिए अल्लाह ने पानी बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं पानी से तुम्हारी जिंदगी है। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय, हमने पानी से तुम्हारे जीवन को जोड़ दिया, तुम्हारी जिंदगी को पानी से जोड़ दिया। तो सारी जरूरियात अल्लाह ने पैदा की है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं में है मंजूलुम बिका कुल्लु हाजा, जिसकी जितनी भी जरूरियात है वो अल्लाह ने पैदा की है। जब वो जरूरियात अल्लाह ने पैदा की तो उसको पूरा भी अल्लाह ही करता है। ये अलग बात है कि अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। इस दुनिया में जरूरत पूरी करने के लिए आदमी सबब इख्तियार करता है, लेकिन उसके आगे एक बात और है कि वो सबब तो इख्तियार करता है मगर ये जरूरी नहीं कि उस सबब से उसकी जरूरत पूरी हो जाए। कि दवाई वो ले सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि दवाई उसको शिफा दे देवे। उसने सबब इख्तियार किया लेकिन शिफा अल्लाह ने अपने खजाने में रखी है। आदमी आराम के लिए बिस्तर पर लेट सकता है, बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि नींद आ जाए। आदमी जरिया माश के लिए दुकान खेत कारखाना डाल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी दुकान उसका खेत और उसकी कारखाना उसको मालदार कर दे। अच्छा बताओ, दुनिया में जितने लोग कर्जदार हैं
वो दुकान बंद करके कारखाना खेत बंद करके कर्जदार हुए या कमाते कमाते कर्जदार हो गए? बोलो भाई जी, कमाते कमाते कर्जदार हो गए, व्यापारी कर्जदार हो गए, किसान कर्जदार हो गया, कारखानों वाले कर्जदार हो गए, क्या बंदर के कर्जदार हुए? कह जी नहीं, उन्होंने तो सारा खोला था और इसलिए खोला था ताकि बहुत मालदार हो जाए। तो फिर ये कर्जदार कैसे हो गए? उन्होंने सबब इख्तियार किया, सबब इख्तियार करना उनके हाथ में था, लेकिन उस दुकान से मालदार बनना वो अल्लाह के हाथ में है। जिसको चाहे उसी दुकान से अल्लाह ने मालदार बना दिया, जिसको चाहे अल्लाह ने उसी तरह की फैक्ट्री से मालदार बना दिया, और जिसके हक में अल्लाह ने नहीं चाहा तो फिर वो फैक्ट्री और कारखाना उसको ले डूबा। आदमी सबब के दर्जे में औलाद ले सकता है, लेकिन औलाद उसकी आंखों की ठंडक बने, उसका राहत का जरिया बने, ये नहीं बना सकता। अगर अल्लाह पाक उसकी औलाद को आंखों की ठंडक बनाए तो वो बन जाएगी, और अल्लाह ना बनाए तो। अच्छा बताओ, आज समाज में सब ज्यादातर और ज्यादातर की औलाद आंखों की ठंडक है या दर्द सर है? जी जरा जोर से बोलो जी, दर्द सर है। तो क्यों दर्द सर है? कितनों ने दुरकत पड़ी थी कि अल्लाह मुझे दर्द सर एक औलाद दे दे जी? किसी ने दुरकत पड़ी थी? पड़ी थी। अच्छा, किसी ने इसका सबब इख्तियार किया था दर्द सर बनाने का कि आवारा जहां सिखाया जाता हो आवारा गर्दी ऐसे स्कूल में भेजाओ जी? तो कैसे स्कूल में भेजते हैं? जहाँ इंसान अच्छाई सिखाई जाती है वहाँ भेजते हैं, या जहाँ बुराई सिखाई जाए वहाँ? जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तब से फिक्र की थी, उसका नाम अच्छा रखा, फिर उसके बाद अच्छे मदरसे में भेजा, अच्छे स्कूल में भेजा, आवारा बच्चों के साथ घूम रहा था तो वहां से उसको हटाकर अच्छे दोस्त उसके बनवाए। तो सारे सबब अच्छा बनने के किए कि बुरे बनने के? जी, तो ये सारे सबब इख्तियार करने के बाद ये बच्चा कैसा होना था? अच्छा नहीं, जुनैद बगदादी होना था। क्या होना था बोलो? जुनैद बगदादी। और अब क्या हो गया? का शैतान का खालाजात भाई। हाँ, क्या माँ बाप अपने बच्चे से आजीज हो चुके हैं? इतनी तोबा पुकार उठे जितनी तोबा तो शैतान से भी नहीं पुकारी होगी। हाँ, आप देख ले। तो ये क्या हुआ? सबब आदमी इख्तियार कर सकता है, उस सबब में वो जो चाहता है वो कर ले, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारे नबी के दुआओं में है, कह अल्लाह सारी हजतें आपने उतारी है, उसको बुरा भी आप ही करेंगे। लेकिन अक्सर लोगों को इन असबाब में रहते हुए ये बातें कम समझ में आती है। क्यों? अल्लाह ने दारुल असबाब बनाई दुनिया को, तो यहाँ पैसों से होता दिखता है तो व्हाट से बोलता है मैं पैसे दे दूंगा, आप देख लेना कर लेना। अपने आदमी की वर्ग होती है, और खान मेरा नाम लेना वो हो जाएगा। तो जो अल्लाह ने असबाब पैदा किए हैं वो असबाब का ऐसा गलबा दिल दिमाग पर चढ़ा कि अल्लाह के हाथ में इन चीजों के लगाम है, इसका जहन कम काम करता है, इसका इन चीजों का काम जहन बहुत कम काम करता है। आदमी वट पाड़ता है वट कि मेरा नाम ले लेना, पैसे है ना उसको लेकर चले जाना। कोरोना के जमाने में पैसों की थैलियां लेकर लोग आते थे कि हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन मिल जाए, हमारे पेशेंट का इलाज हो जाए, और लाशों का ढेर लग गया। क्या लग गया? ऐसा वायरस जिसको देख भी नहीं सकते, और लाशों का अल्लाह ने ढेर लगा दिया। तुम अपनी ताकत लगा दो, पूरी दुनिया के सारे टेक्नोलॉजी अल्लाह ने फेल कर दी। आप तो आज तक आपने नहीं सुना होगा कि पूरी दुनिया लॉक हो गई, जहाज भी रुक गए, ट्रेनें रुक गई, कभी सुना उस जिंदगी में? क्या अल्लाह ने ऐसा छोटा वायरस तूफान बनाकर भेज दिया कि अब कर लो, तुम क्या कर सकते हो? एक वायरस का हम तो मुकाबला नहीं कर सकते। कितने का? अरे बोलो, एक वायरस का मुकाबला नहीं कर सकते। और बेवफाई सबके सामने आ गई, बेटा बाप की लाश उठाने को तैयार नहीं। किसका? हाँ, बेटा बाप की लाश उठाने को तैयार नहीं। मैं गैर ईमान वालों का नहीं कह रहा हूँ, वो तो उनके तो रिश्ते फीके ही पड़ गए थे। ईमान वाले जिनको हुकूक समझाए थे कि तेरी माँ का क्या हक है, तेरे बाप का क्या हक है, और फला का क्या हक है, जिसकी जिंदगियों में जिसकी नजर अल्लाह पर नहीं थी, वो लोग सगे भाई सगे बाप उनके लाशें उठाने को तैयार नहीं थे। हाँ, आपके जिले के एक मौली साहब का इंतकाल हो गया,
उनकी उनका गुसल मैंने लिया था। वो एक जगह पर वहां थे, हम लोग वहां पहुंच गए तो इनका इंतकाल हो गया था और कहीं से बेचारे वो यहाँ पढ़ाते होंगे। तो उनके बेटे से मैंने कहा कि तुम्हारे बाप के जिस्म की आखिरी खिदमत है कर लो, तब मैं हाथ नहीं लगा सकता हूँ। तो उनको गुसल हमने दिया। हमने कहा भाई और कुछ अपने अपने बाप की खिदमत आखिरी कर लो, तो वो नहीं कर सके। तो हमने कफन भी पहनाया, नमाज भी हमने पढ़ी और दफन भी हम लोगों ने किया। आप ही के जिले के थे लेकिन वो यहाँ के मकामी नहीं थे, और कहीं के थे, यहाँ रहते होंगे। ये दुनिया के बेवफाई सबके सामने आ गए, कोई किसी का नहीं रहा, कोई किसी का। अगर बीवी को कोरोना हो गया, शोहर को करीब जाने को तैयार नहीं, माँ बाप को हो गया तो औलाद जाने को तैयार नहीं। वो जो कयामत का मंजर अल्लाह ने बयान फरमाया कि सब एक दूसरे से भागेंगे, वो भागता हुआ नजर आ गया। अभी तो कयामत आते आएगी, छोटी मोटी कयामत आई थी, छोटा सा जर्रा आया था जो नजर भी ना आए। ये सारी की सारी चीजें अल्लाह के हाथ में है। इन चीजों का जहन इन असबाब की दुनिया में रहते रहते कमजोर पड़ जाता है। फिर आदमी इन शक्लों में विश्वास करता है और विश्वास करके ऐसा ऊंडा उतर जाता है, गहरा उतर जाता है कि इन चीजों में अल्लाह के अहकाम पर छुरी चल जाती है, अल्लाह की मर्जियात पर छुरी चल जाती है। उसे कोई परवाह नहीं होती कि मेरी इस हरकत से मेरा अल्लाह राजी होगा या नहीं होगा। नतीजे में आप देखें कि आज सारे लोग हैरान परेशान हैं, सारी दुनिया परेशान है, बहुत कम लोग सुख का जीवन वाले मिलेंगे। ये तो मुस्कुराकर हंसते हैं खाली, कैसे हंसते हैं, बड़ी गाड़ियों में दिखते हैं, बड़े बंगलों में दिखते हैं और मजे से दिखते हैं। जरा उनको बैठो और देखो, कुरे दो तो दुखी है, दुख के अलावा कुछ नहीं। पैर बहुत जाड़ा है तो दिखता है हो माशाल्लाह इतना सेहतमंद है, वो सोजे चढ़े हुए हैं। क्या चढ़े हुए हैं बोलो, सोजे चढ़ गए हैं। ओ इतना चेहरा लाल है, वो तमाचे मारकर लाल करके रखा है। अभी कल ही एक फैमिली थी एक इज्तिमा में, तो उनका एक साहब ने कहा माशाल्लाह कैसे अच्छे जोरदार हो, बाप बेटे चहचहाते हैं, मजे से हो। तो उनका छोटे वाला बेटा कहने लगा हम सब टूटे हुए हैं, ये तो सबके बीच में इसलिए हंस रहे हैं, ये तो सबके बीच में चहचहा रहे हैं क्योंकि उसके बगैर और छुटका भी नहीं है, चहचहा नहीं है वो किए बगैर। कोई अपना दुख बयान कर देता है और कोई दुख बयान नहीं कर पाता। बाकी दुखी लोग 80-90% लोग दुखी है, कुछ कह पाते हैं कुछ नहीं कह पाते, लेकिन ये कम जहन जाता है कि ये दुख आया कहां से है और ये दुख दूर कौन करेगा। नबियों ने ये बातें समझाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो जो बात फरमाई उसमें ये फरमाया लोगों, अपने पैदा करने वाले के साथ मामला ठीक कर लो, अल्लाह तुम्हारे और मखलूक के दरमियान के मामले को ठीक कर देगा। मखलूक अल्लाह की है, ये सारी मखलूक वो अल्लाह की पैदा की हुई है। अगर हमारा जोड़ अल्लाह उनके साथ बिठा दें तो एक ही घर में कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता और मुर्गे एक साथ रहते हैं, बिल्ली और मुर्गियां एक साथ रहती है। हाँ, वरना वो तो दुश्मन है, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। लेकिन हजरत शेख ने फजल की किताब में लिखा एक बुजुर्ग का वाकया कि उनके घर में बिल्ली और मुर्गियां साथ रह रही है, खा रही है, पी रही है। अल्लाह ने इनके आपस के अंदर जोड़ बिठा दिया। क्या बिठा दिया? जोड़ बिठा दिया। जैसे इन जानवरों की दुश्मनी को अल्लाह जोड़ से बदल दे, ऐसे इंसानों के तोड़ को अल्लाह जोड़ से बदलते हैं। अल्लाह फरमाते हैं निकाह के दिन में कि हम तुम्हारी बीवी के दिल में तुम्हारा जोड़ डाल देंगे। वो जालना बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि तो जब तुम जवान होंगे ना तो तुम्हें मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत तो तुम्हारी बीवी के अंदर हम मोहब्बत भर देंगे। अगर उसके अंदर मोहब्बत ना हो तो निकाह के बाद की जिंदगी किरकिरी हो जाएगी। तो जवानी में मोहब्बत चाहिए और बुढ़ापे में माँ की ममता उठ गई, कहिए माँ तुम्हारी बीवी को तुम्हारी माँ जैसी बना देंगे। कैसे बना देंगे? जवानी में बीवी के लिए हो गई और बुढ़ापे में हम उसको रहमतन, वो क्या करेगी का पूरा रोल माँ जैसा अदा करेगी। घर से निकलेंगे हाजी साहब जरा देखो बारिश बहुत हुई है, जरा संभल कर चलना, फिसल ना जाओ। ये मम्मी कहती थी कभी, अब वो कौन कह रही है? अरे बोलो, कपड़े खराब हो गए, मम्मी ने कहा था बेटा
तो कपड़े बदल लो, बहुत मैले हो गए हैं। अब अर्जुन कह रही है, हाजी साहब कपड़े बहुत मैले हो गए हैं, कपड़े बदल लो। अल्लाह ने माँ जैसी ममता दे दी उसको। दवाई खाने का था, अम्मी कह रही थी बेटा दवाई खाई नहीं खाई। अब अर्जुन कह रही है, क्या कह रही है, हाजी साहब दवाई खा लीजिए। रात जल्दी नहीं आते थे तो अर्जुन का फोन आ जाता था कि कब आओगे बीवी का। अब अम्मी का फोन आता था, अब बीवी कह रही है कि आप अभी तक घर नहीं आए। अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसके दिल में रहमत डालते हैं। वह जालना भाई नकुम मवद्दतन व रहमा। अगर वो 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 जवानी में बीवी जैसी ना रहे और माँ जैसी बन जाए तो मजा ना आवे, और बुढ़ापे में बीवी जैसी रहे माँ जैसी ना बने तो मजा ना आवे। ये सारी चीजों को अल्लाह करते हैं, अल्लाह 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 करते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने मामले को अपने रब के साथ ठीक कर लेगा, मन असलह मा बैनहू व बैन अल्लाह असलह अल्लाह मा बैनहू व बैन खल्क़िही। ये मदीना मुनव्वरा जाने के बाद हुज़ूर ने पैगाम सुनाया था। ये नहीं कहा कि तुम तिजारत मत करो, तुम खेती मत करो, तुम नौकरियां मत करो। वो दुनिया में हमसे ज्यादा मशगूल थे। कितने थे बोलो, हमसे हमसे ज्यादा वो दुनिया में। हम तो एक बीवी में खेल रहे हैं, कितनी बीवियों में, और वो एवरेज कितनी बीवियां थी, अरे बोलो। तो सच बताओ, हमसे ज्यादा मशहूर हुए हमसे कम हुए जी? हमारे पांच बच्चों में तो हाश, बस खेल पूरा हो गया, पांच बच्चे छह बच्चे बस। अरे काफी फरमाते हैं 150 को तो मैं अपने हाथ से दफन कर चुका हूँ। तो सच बताओ, हमारी मशगूली ज्यादा हुई, उनकी मशगूली ज्यादा हुई? अरे बोलो तो सही भाई, उनकी हम तो चार के फीस में, चार के ट्यूशन में, चार की चीखों में ही हम तो मर जाते हैं। और संजोग ऐसे हो गए, एक बेटी बेटी पैदा हो जाए तो बेटी दर्द सर हो जाती है, और उनका घर बच्चों से भरा पड़ा है, पुत्रों से, नवासों से। और ये उस जमाने की बात नहीं है, आज भी ऐसा है कि नेक लोग। हम लोग एक मरतबा एक मुल्क में 4 महीने लगा रहे थे, एक छोकरा मेरा तर्जुमा कर रहा था। मैंने कहा कितने भाई बहन हो? तो 50। कितने? 50। जिन्हें सुनता है तो ऐसी जवानी में बुढ़ा हो गया तो क्या चार चार करेगा? 50। मैंने कहा तेरा कौन सा नंबर है? इसका 49 का। अच्छा, अब्बा की उम्र कितनी हुई? 110 साल। तुम कब पैदा हुए थे? 98 साल में। 98 साल में ये 49 सपूत पैदा हुआ। फिर मैंने कहा 50वां का 102 साल में, और अब्बा का इंतकाल 108 साल में हुआ। यूं कहते मर्द मर्द, हम बातों का कहते मैं मर्द हूँ, वो अमल से बताते हैं मर्द है मर्द। कहते अरे बोलो मर्द, यूं हम हमको तो मर्द बोलने की भी हिम्मत नहीं है। हाँ, के जमाने में भी सुकून का जीवन। हमने कहा तुम्हारे घर आएंगे, जी चलो। तो ले गए एक 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 बहुत ऐसे ऐसी जमीन थी, उसमें सब बीवियों के चार झोपड़े बने हुए थे, फिर उसमें पोतरों के नवासों के। तो पोतरे नवासे कितने होंगे? उनके 50। तो उनके पोतरे नवासे कितने होंगे? 50। तो वो हमसे ज्यादा दुनिया में मशगूल। और उस जमाने में वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते थे। जितने व्यापारी साहब आते सब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेसमैन, सब अक्सर काफलों में बाहर जाते थे, काफलों से माल लाते थे, काफलों में माल बेचते थे। हमको अभी स्पेलिंग सीखने का है उसका, आप समझे बात? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का स्पेलिंग हमको सीखने का है। उस जमाने में वो करके फारिग हो गए। अक्सर लोग मुल्क शाम से, हमारे हिंदुस्तान से उनके गरम मसाले जाते थे, और मुल्क शाम और यमन और यहाँ और इधर, हमारे नबी भी नबूवत से पहले शाम तक का काफला गए थे। तो उस जमाने में अच्छे व्यापार वो करते थे, खेतियां उनकी भरी हुई थी, लगे हुए बागात, काम से ज्यादा मशगूल थे वो सारे के सारे। तो फिर उनमें और हमें क्या फर्क हुआ? हमने और उनमें फर्क यह हुआ, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम ने जो बात समझाई वो उसको अपने जीवन में शामिल कर दिया, अल्लाह को बीच में दाखिल कर दिया। क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने दारुल अस्वाब बनाया है, यहाँ कोई सन्यासी नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? सन्यासी जानते हो? अरे भाई सन्यासी जानते हो? सन्यासी उसको कहते हैं कि जो ये कहे कि भाई मैं सबको छोड़कर पहाड़ पे चला जाऊं, जंगल में चला जाऊं, शादी भी ना करूं और धंधा। ओ भाई यहाँ सब करना पड़ेगा, शादी भी करनी है, धंधा भी करना पड़ेगा। हाँ, जो आदमी कमा सकता है फिर लोगों के सामने हाथ फैलाए तो ये कल कयामत के दिन ऐसा होगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। अपने माल बढ़ाने के लिए सवाल करे, اللہ کی نگاہ میں یہ ذلیل آدمی ہے, اللہ اسے سخت ناراض ہوتے ہیں. تو اس دنیا میں تو مشغول ہونا پڑے گا, اور کتنا مشغول ہونے کا, کہ اللہ پاک اگر راجہ بنائے تو راجہ بن جانے کا, کیا بنائے. ہاں اس دنیا میں سب چیزیں بننے کی رجا ہے. اگر منع ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راجہ بنتے. ارے بولو بھائی راجہ بنتے, وہ راجہ تھے بادشاہ سلامت. حضرت عمر فاروق بادشاہ سلامت, حضرت عثمان غنی بادشاہ سلامت, بڑے بڑے بادشاہ. کتنے بادشاہ؟ پورے نوساری ضلع کے بادشاہ, برابر ہے. تو ان کی حکومت تین کھنڈ پر تھی. کتنے کھنڈ پر؟ کھنڈ جانتے ہو آپ لوگ؟ ارے ایک بر اعظم, اس کو جانتے ہو کھنڈ کو؟ کھنڈ کس کو کہتے ہیں؟ ایک بر اعظم. ایک بر اعظم میں کتنے ملک ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ ایشیا کھنڈ میں کتنے ملک ہیں جی؟ کسی نے لقمہ دیا؟ کتنے ہیں یاد ہے آپ کو؟ افریقہ کھنڈ میں کتنے ہیں جی؟ 53, صحیح 53 یا 54. ایک کھنڈ میں صحابہ کی حکومت تین کھنڈ پر. کتنے کھنڈ پر؟ تین بر اعظموں پر. تو اگر یہ بادشاہ بننا برا ہوتا تو ایک بھی اس میں سے بادشاہ نہ بنتا. کتنا بڑا یہ ہندوستان, ایک نہیں ایک اسٹیٹ ہمارا ہوتا ہے, یو پی کشمیر اور راجستھان ہے, ایک اسٹیٹ ہے. اس کے ایک ضلع میں ہم رہتے ہیں, اس ضلع کے چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں, وہاں ہماری 2-4-5 بیگھہ زمین ہوتی ہے. تو ہم یوں چلتے ہیں, یوں چلتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اور وہ کیا تھے؟ وہ گاؤں میں نہیں, 2-5 زمینیں نہیں, 2-5 بیگھے نہیں, 25-50-100 بیگھے نہیں. وہ گاؤں نہیں, وہ ضلع نہیں, وہ ضلع کا وہ اسٹیٹ نہیں, وہ صوبہ نہیں, وہ ملک نہیں, وہ کھنڈ کے راجا تھے. کس کے راجا تھے؟ اور جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں تو یہاں پیوند لگے ہوئے ہیں. کیا لگے ہوئے ہیں؟ کہ کیا ہوا کہ اس کھنڈ کے راجا بننے نے ان کے تیور خراب نہیں کیے. کیا خراب نہیں کیے؟ جو درخت کے نیچے سوئے ہیں, اینٹ رکھ کر سوئے ہیں درخت کے نیچے, اور گھڑے پر سواری کر رہے ہیں. کس پر سواری کر رہے ہیں؟ خچر پر سوار ہے, گھڑے پر سوار ہے. کہ وہ اپنی حقیقت کو, ہم کچھ نہیں ہیں, یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے. تو اونٹنی پر سوار ہے, گھوڑی پر سوار ہے, گھوڑے پر سوار ہے, تیور خراب نہیں ہوئے. تو پھر اس میں انہوں نے اللہ کو داخل کر دیا. پھر دنیا ساری اللہ کی ہے. پھر اللہ دیتا ہی چلا گیا. وہ کہتے ہیں اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ اور جب لیتا ہے تو جھاڑو مار کے لیتا ہے. کیسے لیتا ہے؟ جھاڑو مار کے. تو اللہ نے ان سب کی سب چیزیں جو ان کے علاوہ کی تھی وہ سب کا ان کو مالک بنا دیا. کیوں؟ کہ ان کو اس میں رہنا گیا تھا. اس میں کیسے رہنا؟ ابا اپنے بیٹے کو کچھ چیزیں دے رہے اور اس کے تیور اچھے رہیں, رہن سہن اچھا رہے, تو ابا اور اس کو بڑھائیں گے یا کم کر دیں گے؟ ارے بولو بھائی, اور 50,000 روپے لی, 1,00,000 روپے لی تھی, اس میں تو اس کے تیور بدل گئے. ابا کے ساتھ بات کرنے کا لہجہ بدل گیا, گھر میں آنے جانے کے انداز بدل گئے. تو ابا کیا کریں گے کہ ابا بیٹا تو بہت اچھا ہو گیا ہے, 1,00,000 پہلے دیے تھے اور 2-4 لے جائے, ایسا کریں گے نا؟ ارے بولو کیسا کریں گے؟ بڑھائیں گے یا دیا ہوا واپس لینے کی کوشش کریں گے؟ جی کا دیا ہوا واپس لینے کی کوشش ہوگی کہ بھائی اس کے تو تیور ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین نے ان کی یہ شکتی پیدا کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کی محنت نے ان کے اندر یہ طاقت پیدا کر دی کہ اپنے ان ساری شکلوں میں اللہ کو داخل کرنا. کہ کوئی کام اللہ کو داخل کرنے کا مطلب کہ ہم ان سب چیزوں میں رہ کر کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو اللہ کے انعامات اور بڑھتے چلے گئے, جس کے تیور بگڑتے نہیں ہیں. اس مبارک محنت کے ذریعے سے بات سمجھا جاتی ہے, کوئی تجارت نہ چھوڑے, کوئی کاروبار نہ چھوڑے, کوئی دھندا کھیتی باڑی نہ چھوڑے, ان چیزوں میں اللہ کو ناراض نہ کرے. ان چیزوں میں اللہ کو ناراض نہ کرے. اگر اللہ کو ناراض نہیں کرے گا تو جو اللہ کے ہاتھ میں سب چیزوں کے خزانے ہیں, اللہ ان خزانوں کو, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زمین والے اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں تو ہم کیا کریں گے؟ تو آسمانوں سے بھی دروازے کھول دیں گے, زمینوں سے بھی دروازے کھول دیں گے. ولو ان اہل القرى, اگر زمینوں والے آمنوا, ایمان لائیں, واتقوا, اور اللہ سے ڈرتے ہوئے جیون گزاریں, لفتحنا علیہم ابوابا من السماء, آسمانوں سے اور زمینوں سے کھول دیں گے.
کہ آسمانوں سے بھی زمینوں سے بھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے تھے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتی تھی. کہ ان کے حالات کیسے تھے, جب وہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے, مکے سے مدینہ منورہ, تو وہ ساری چیزیں چھوڑ کر آ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو بھائی بنائے, تم دو بھائی ہو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہو. تو انہوں نے بھائی بندی ہی کہا کہ بھائی دیکھ تجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرا بھائی بنایا ہے, یہ میرا مال ہے تو آدھا لے لے, اور یہ میری بیوی دو بیویاں ہیں تجھے جو پسند ہو لے لے, میں اس کو طلاق دوں تو عزت پوری کرے تو اس سے نکاح کر لینا. تو کہنے لگے تمہیں تو تمہارا سب مبارک, مجھے تو بازار دیکھا تو بازار کا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بازار اس طرف ہے. اچھا تو جیسے وہ دن شکرواری رویواری اتوار وہاں لگتی ہے نا ہٹ, تیسے بازار چلے گئے اور وہاں جو چیزیں ملتی تھی اس کو لیتے گئے ادھار اور بیچتے گئے, ایک سے ادھار لیا ایک کو روکڑے میں بیچا. شام کو گھی اور پنیر لیتے گئے بیچتے گئے, یہاں سے لیا یہاں بیچا, اور سروڑے میں جو دینے کا تھا وہ دیا, جو نفے کا تھا وہ گھر لے کر گئے, تھوڑا سا گھی نے تھوڑا پنیر نفے میں گھر لے کر گئے. اس طرح سے ویاپار شروع کیا, کچھ نہیں زیرو مونڈی سے شروع کیا, کیپیٹل کچھ نہیں. لیکن جب ان کا انتقال ہوا او ہو 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 اتنا سونا چھوڑا کہ ان کے بچوں میں سونا توڑنے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے کلہڑیاں ٹوٹ گئی, کلہڑی سے توڑا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو کہنے لگے کہ اللہ نے میرے جیون میں ایسی برکت دے دی کہ میں مٹی پر ہے تو صحابہ میں مٹی کو بھی پکڑتا تھا تو اللہ اس میں سونا بنا دیتا تھا, وہ حقیقت میں سونا نہیں ہو جاتا تھا, سونے جیسی جیسے وہ سونا ہو جاتا ہو ایسی برکت ہو جاتی تھی. کیا ہوا کہ اس میں اللہ کو داخل کر دیا کہ یہ مال آیا لیکن مال نے ان کے رہن سہن کو نہیں بدلا, ان کی چال چلن کو نہیں بدلا, ان کے زبان کے ٹون کو نہیں بدلا, ان کے مزاج کو نہیں بدلا. ایک مرتبہ ایک آدمی کا نکاح ہونا تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جاؤ تم عبد فلاں کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کر کہنا. تو دیکھا ان کی حالت ایسی عجیب خستہ ہے, اس زمانے کے مالدار حضرت عثمان ایسی خستہ حال ہے اور اپنی بیوی سے لڑائی لڑ رہے ہیں. کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ جو دیا جلایا تھا اس کی ڈیویٹ, اس کا فیتا وہ لمبا کر دیا تھا, تو لمبا ہونے کی وجہ سے اس میں تیل زیادہ جل رہا تھا. تو وہ لڑائی تھی, تو نے اتنا زیادہ کر دیا اس میں تیل زیادہ جل جائے گا. تو آدمی نے دور دور سے سنی لڑائی, وہیں سے واپس مڑ گئے. تو انہوں نے دیکھ لیا کوئی آیا تھا, واپس گیا, اس کو بلایا بھائی ادھر آؤ. بھائی کیوں آئے تھے؟ تو مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے پاس بھیجا تھا کہ آپ میری تھوڑی مدد کریں. تو پھر کیوں واپس جا رہے ہو؟ کہ میں نے دیکھا تم اپنی بیوی سے فیتا لمبا ہو گئے, اس میں لڑتے ہو, میری کیا مدد کرو گے؟ تو کہنے لگے وہ بھائی دونوں باتیں الگ ہیں. کہ کیوں؟ کہ وہ مجھے اللہ کے وہاں حساب دینا ہے, اللہ نے مال دیا تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ میں فیتا لمبا کر دوں, کہ اس کا مجھے اللہ سے حساب دینا ہے, ایک ضرورت کتنے سے پوری ہو رہی تھی اور تم نے اس کو کتنا استعمال کیا تھا. اور رہی تیری بات تو مدد کرنا تو یہ الگ چیز ہے. تو اس کو گھر میں گئے اور ایک تھیلی ہمیانی نکال کر دی, 1000 سونے کے سکے دے دیے. ان ساری شکلوں نے ان کسی چیز کو نہیں بدلا. جب یہ ہوا تو یہ زمین اللہ کی تھی. اللہ فرماتا ہے کہ زمینوں کا وارث ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو وارث بناتے ہیں. ہاں ہم روز اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یوں کر دے یوں کر دے, تو یوں کر دے یوں کر دے رہنا آتا ہے اس طرح. ہمارا چھوکرا تو ہمارا بیٹے کو تو سائیکل ملی تھی, بائک مل جاتی, وہ ٹیڑھا بیٹھ جاتا ہے. یہ کیوں ٹیڑھا ہو گیا؟ یہ تو بہت اچھی کمر کا تھا, اس کی کمر کیوں ٹیڑھی ہو گئی؟ کب بائک آ گئی, بائک. تو اس کو بائک کی بھی ہضم شکتی نہیں ہے. کس کی نہیں بولو؟ بائک میں ٹیڑھا ہو جاتا ہے. وہ کھنڈ کا مالک نہیں ہوا, کس کا مالک نہیں ہوا؟ اس کو تو بائک عزب نہیں ہوتی بھائی. اور بائک والے کو فور ویلر مل جائے تو پھر کہنے ہی کیا, پھر تو کہنے ہی کیا, بخار چڑھ جاتا ہے ان کے دماغ پر, بخار چڑھ جاتا ہے. ہاں یوں اچھا چلتا تھا, یوں چلتا ہے, یوں چلتا. ارے اس کو کیا ہوا؟ کوئی 6 دن سے جم جاتا ہے. کتنے دن سے جم جاتا ہے؟ 6 دن. ابھی تو باڈی بلڈر بنے بنے گا, یوں جاتا ہے 6 دن کے بعد. اس کو 6 دن کی جم بھی ہضم نہیں ہوتی. ہاں اللہ نے ذرا خوبصورت بنا دیا تو دن بھر ناٹک کرتا رہے گا, یوں یوں پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے, آپ دیکھ لینا. اور ذرا اللہ نے مال دیا تو اپنے سگے بھائی بھائی جس کا غریب ہے تو ٹون بدلا ہوا بات کرے گا, جیسے اس کو خرید لیا ایسے بات کر رہا ہے. ہاں یہ تبلیغ کی محنت کے راستے سے یوں کہتے ہیں, یہ شکتی ہضم شکتی اچھی بناؤ. کیا بناؤ بولو؟ ہضم شکتی, کہ یہ سب نعمتیں آئے تو ہم اس کو برداشت کر سکیں. کہ وہ اب تو پھر اللہ کی طرف سے دہانے کھل جائیں گے, جیسے اللہ پاک نے صحابہ کے لیے سب کھول دیا. हाँ हमारे पास तो अच्छी डिग्री आ जाएगा ना, डिग्री डिग्री का दिमाग अल्लाह ने दिया था, अगर वो अल्लाह दिमाग जरा ढीला कर दे तो हम कहते हैं जरा स्क्रू ढीला हो गया। अब क्या करते हैं हजरत, क्या जनाब वो जो फर्स्ट नंबर में कामयाब हुए थे अब स्क्रू ढीला हो गया, अब पायजामा निकालकर कंधे पर डालकर नंगे घूमते हैं, इसको क्या हो गया? स्क्रू ढीला हो गया। स्क्रू क्या हो गया? ढीला हो गया। कि अल्लाह का निजाम है, नबियों ने ये सारी बातें इंसानों को समझाई है कि हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं तुम अगर ये चाहते हो कि अल्लाह पाक तुम्हें खुशहाल रखे खुशहाल, तो इन सब शक्लों में अल्लाह को दाखिल कर लो। अल्लाह को दाखिल करने का मतलब कि इन सब चीजों में इन सब नियामतों से अल्लाह को नाराज ना करो। अगर बेटे से अल्लाह को नाराज करोगे तो बेटे पर हालात आ जाएंगे या बेटे से हालात आ जाएंगे, बीवी में अल्लाह को नाराज करेंगे तो बीवी के रास्ते से हालात शुरू हो जाएंगे। किताबों में आता है कि अब इन चीजों में नाशुकरी होती है, नाशुकरी तो अल्लाह इसमें जवाल लाता है, जवाल जवाल आता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जवाल से पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिन ज़वाल नियामतिक, अल्लाह तेरी दी हुई नियामतों में जवाल नहीं आना चाहिए। जवाल कैसे आता है? उलमा फरमाते हैं कि बाज़े मर्तबा अल्लाह उसे वो नेमत ही ले लेते हैं। अच्छा ये मान ले तेरे दिमाग को खराब किया है, अब ऐसा ऐसा कर्ज़दार उसको कर देते हैं। अच्छा जाओ ठीक है, कैसे हो गए? वो हमारे मौलाना यूनुस साहब पूना एक वाकया सुनाते थे, याद है हम लोगों को? कि ना पैसे आते हैं कैसा नशा चढ़ता है कि एक भिखारी था फकीर, वो पैसे मांगने जाता था, उसका नाम था कल्लन। क्या नाम था? कल्लन। तो वो पैसे मांगने जाता था और कबर में और लाकर कबर एक पोली कबर थी खाली कबर उसमें छुपा देता था। तो जब पैसे वहां ज्यादा हो गए तो उसने कहा, किसी ने आवाज दो कल्लन इधर आ। तो भाई तुम तमीज है कि नहीं बात करने की? भाई क्यों? कहा मुझे कल्लन साहब कहिए, आप पैसे कबर में पड़े हैं और तशीन नशा यहाँ चढ़ गया। क्या कहने लगा? मुझे आप कल्लन न कहें, मुझे क्या कहें आप? कल्लन साहब। अच्छा भाई चलो कल्लन साहब। और थोड़े से पैसे बढ़ गए तो किसी ने कहा कल्लन साहब, तो कहा तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? क्यों? कहा जी मुझे कहिए जनाब कल्लन साहब, जनाब कल्लन साहब। अच्छा जनाब कल्लन साहब, तो जनाब कल्लन साहब हो गए। थोड़े दिन हुए, एक मरतबा वो पैसे छुपाने के लिए किसी ने देख लिए, किसी ने देख लिए और वो छुपा कर गया और तो वो लेकर निकालकर सब भाग गया। तो पूरी हिमियानी उसकी चोरी करके भाग गया। तो वो बाहर निकला तो किसी ने आवाज लगाई, जनाब कल्लन साहब तशरीफ लाइए। कह जी मैं जनाब कल्लन साहब नहीं, मैं तो कल्लन का कल्लन ही रह गया। मैं क्या रह गया बोलो? कल्लन का। फिर अल्लाह उसको कल्लन का कल्लन कर देते हैं। आपको मार्केट में बहुत लोग मिलेंगे कि जिनके अब्बा मालदार थे और अल्लाह ने फकीर कर दिया, गरीब कर दिया, वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं गरीब क्यों हो गया। और वो लोग भी मिलेंगे जो गरीब थे और अल्लाह ने खुशहाली कर दी, चढ़ते ही चले गए। ये अल्लाह का निजाम है कि इसमें जवाल आया और इसका जवाल खत्म हो गया। ये दुनिया की नेमतों में आप गौर करो, इसी बच्चे को कितना हम पालते पोसते हैं। तो बाज मरतब अल्लाह इस औलाद को उठा लेते हैं, अच्छा चलो इसको उठाओ, औलाद ले ली अल्लाह ने। और बाजे मरतबा अल्लाह औलाद नहीं उठाते, औलाद के नफे को उठा लेते हैं। औलाद है लेकिन दर्द सर बनी हुई है, वरना औलाद तो बुढ़ापे की लाठी है। अल्लाह ने सिस्टम बनाई है, 20 साल में हम निकाह करेंगे, हमारा बच्चा 21-22 साल में पैदा हो जाएगा। जब हम 40-45 को पहुंचेंगे हमारा जवान हमारा हाथ पैर बाजू बन जाएगा। हम 45 को पहुंचे हमारा बेटा 20 का हो जाएगा। हम 60 को पहुंचेंगे दूसरा बेटा इतना हो गया होगा। हमारे बुढ़ापे की लाठियां होती है, लेकिन जब से सिस्टम हमने चेंज कर दी, 30 साल में निकाह, 35 साल में निकाह, तब वो उसका वो बुढ़ा होगा 50 साल का, तब उसका बेटा 20 साल का स्कूल पूरे करे, वो बुढ़ापे के लाड़ी नहीं बनते। हमने चेंज कर दिया निजाम, जब से हमारी अकल घुसी निजाम सिस्टम आगे पीछे हो गया। हाँ निजाम बिगड़ा तो अल्लाह पाक या तो इस औलाद को उठा लेंगे या उस औलाद के नफे को अल्लाह उठा लेते हैं। बीवी के अल्लाह नफे को उठा, बीवी मौजूद है, बीवी का नफा अल्लाह ने उठा लिया। हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह ऐसा करते हैं कि सब कुछ होते हुए बगैर सब कुछ का कर देते हैं, कि घर होते हुए बगैर घर का कर देते हैं, और बीवी होते हुए बगैर बीवी का कर देते हैं, और औलाद के होते हुए बगैर औलाद का कर देते हैं। हजरत फरमाते थे कि अल्लाह ऐसा करते हैं जब नेमतों की नाकदरी होती है। नबियों ने ये बात समझाई, इसलिए आप देखो नबी ने कभी ये नहीं कहा तिजारत न करो, खेतियां न करो, बल्कि फरमाया जो किसान खेती करेगा उसकी खेती तस्वीर देगी, तस्वीर करेगी, वो खेती करने वाले के नामे अमल में जाएगी।
اگر کوئی آدمی تجارت کرے گا اور اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچائے گا اس کے فضائل سنائے. یہ سنایا کہ اگر تاجر سچائی کے ساتھ تجارت کرے اور امانتداری کے ساتھ تجارت کرے تو یہ انتقال کرے بس اتنی دیر ہے, انتقال کرتے ہی اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا. نبیوں کے ساتھ اگر تجارت کرنا برا ہوتا تو اس کا حشر نبیوں کے ساتھ نہ بنتا. راجہ اگر کوئی بادشاہ بنا اس کے فضائل سنائے, بس ایک شرط لگا دی کس میں اللہ کو داخل کرو. کیا مطلب؟ اللہ نے حکم دیا کہ انصاف بادشاہ کو کیا کرنا ہے, کہ بادشاہ بادشاہ ہے وہ انصاف کرے گا. تو انصاف کرنے والا بادشاہ اگر بادشاہ بن گیا تو وہ کیا کرے گا؟ کل قیامت کے دن سات لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے, اس میں ایک انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا. کہ کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا, جیسے ہم ابھی پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں سایہ ہے, ورنہ باہر دھوپ ہے تو ہمیں یہ سایہ مل گیا. ایسے سب جگہ دھوپ ہوگی, ایک جگہ سایہ ہوگا وہ اللہ کے عرش کے نیچے. تو فرمایا کہ وہ اس بادشاہ کو وہاں جگہ دی جائے گی جو انصاف کرنے والا ہے. اگر بادشاہ بننا برا ہوتا, بادشاہ بننا برا ہوتا تو اللہ پاک ان کے فضائل نہ رکھتے. تو ہمیں اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے, ان سب چیزوں سے ہمیں نہیں روکا. یہ حکم دیا اس میں اللہ کو داخل کر لو. ان چیزوں کی وجہ سے تمہارے ٹون نہ بدلیں, ان نعمتوں کی وجہ سے تمہارا رہن سہن نہ بدلیں, تمہاری اٹھک اٹھک بیٹھک نہ بدلیں, لہجے نہ بدلیں, تو اس پر لگام ڈالنا سیکھو. بندہ کہتے ہیں بندھے ہوئے کو. اپنے آپ کو باندھنا سیکھو. میں کیا ہوں؟ میں کچھ نہیں ہوں. کل سورت کے اجتماع میں ہم لوگ تھے, پر کل ہی تو ایک صاحب صبح ہمارے ساتھ تھے, پھر دعا بھی دعا سے پہلے ہمارے ساتھ تھے, اور دعا سے 10 منٹ پہلے استنجے میں گئے اور استنجے سے فارغ ہوئے اور وہی جنازہ اٹھ گیا. آدمی چلتے چلتے چلا جاتا ہے, بھائی تیرے ہاتھ میں تیرا کیا ہے؟ کہ میں کچھ نہیں ہوں. ان چیزوں کا احساس, میں پانی کا بھبولا ہوں, یوں کر کے پھوٹ جاؤں گا. ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کوئی پورا اجتماع کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. اجتماع سے لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں. ان چیزوں کا استحضار, اپنے اوپر ہمیں بھروسہ نہ آ جائے, ہماری نظر ہمارے اللہ پر کیسے چلی جائے کہ میں جب تک جیوں گا میرے ساری ضروریات اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کے پورے کرنے والے اللہ ہے, اور اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو داخل کر لیتے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں جو چار چار مہینے لے جانے کو کہتے ہیں نا, وہ تبلیغ کے لیے نہیں لے جانے کو کہتے. ہم اپنے گھروں پر رہتے ہوئے, اپنی سماج اور سوسائٹیوں میں رہتے روز انہی باتوں کو سنتے ہیں, یہی باتیں ہمارے کان پر پڑتی ہیں, تو ہماری جو نظر اللہ پر ہونی چاہیے وہ نظر میں ہماری کمزوری آ گئی. اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں 4 مہینے گزارے, تاکہ 4 مہینے میں جس طرح اس 3 دن میں اجتماع میں انہی باتوں کو روز سنتا ہے. اس سننے سے سب سے پہلے دماغوں کی سوچ صحیح ہوتی ہے, آدمی کے دل کا فکر صحیح ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اس کی تمیز ہو جاتی ہے. تو اللہ کے راستے میں روز جانے کے بعد روز تعلیم کے حلقوں میں یہ سنیں, اس کے بعد اس اللہ کے راستے میں جا کر اس جیسی زندگی بنانے والا مشق کرے. دیکھو سننے سے خالی نہیں بات ہو جائے گی بھائی, ایسے اجتماع ہم روز سنتے ہیں, پتہ نہیں کتنے سالوں سے سنتے ہیں, اور یہ تعلیم کے حلقوں میں ہم روز بیٹھتے ہیں, لیکن اس کا ماحول نہیں ملتا. ماحول سے آدمی بنتا ہے. دیکھو ابھی سب کے سر پر ٹوپی آ گئی, پھر ہم سے پوچھے کیوں, کہ یہاں ٹوپی رکھنے کا رواج ہے, ماحول ہے, سارے ٹوپی والے ہو گئے. سب ٹوپی والے گئے کہ اجتماع کے ماحول نے ہم کو ٹوپی والا بنا دیا. ویسے بننا یہ سب باتیں سارے لوگ سنتے ہیں, لیکن ان چیزوں کے لیے ماحول چاہیے. اللہ کے راستے میں 4-4 مہینے اس لیے لے جاتے ہیں کہ وہاں 4 مہینے تک اس کو ماحول ملے گا ان چیزوں کو سننے کا, اور جو سنا ہے اس جیسا بننے کا, جیسا سنا ایسا بننے کا اس کو ماحول ملے گا. تو 4 مہینے میں وہ سنبھلی ہوئی زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے. کیسی زندگی بولو؟ سنبھلی ہوئی اللہ کے دھیان والی. پھر اس سے کوئی چوک ہوتی ہے نا تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے تعلیم میں سنا ہے کہ یہ بات غلط ہو گئی, میں نے یہ غلط کیا تھا. ہم لوگ ایک مرتبہ جماعت میں گئے تھے رامپور یوپی میں, تو ہمارے امیر صاحب جو تھے ڈاکٹر تنویر, وہ آج کل ابو ظبی میں ہوتے ہیں دبئی میں, تو ایک ملک کے بچے ہمارے ساتھ تھے. تو جب وہاں گئے تو انہوں نے بڑے بوڑھوں کو لوگوں کو مسجد میں دیکھا, تو کہنے لگا امیر صاحب یہ بڑے بوڑھے لوگ یہ کہاں رہتے ہیں؟ امیر صاحب نے کہا ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو وہ پوچھا کیوں آپ ایسا پوچھتے ہو؟ کہ ہم تو ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے. کہاں کہاں رکھتے ہو؟ ہم تو ان کو اولڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں. اولڈ ہاؤس میں کیوں آپ ایسا کرتے ہو؟ کہ ڈسٹرب کرتے ہیں, ڈسٹرب. امیر صاحب بہت سمجھدار تھے کہ ابھی بچے نئے نئے آئے ہیں, ان کو ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک ہفتہ گزرا ان کا, امیر صاحب نے ماں باپ کے حقوق کا باب پڑھا, فضل صدقات میں ہے نا,
कि माँ बाप क्या चीज है। वो पढ़ा तो अंदर तवा गर्म हो गया था, अब रोटी सेकने की है। ठंडे तवे पर रोटी नहीं सेकी जाती। तबलीग में तवा कैसे गर्म करना वो सिखाते हैं। हमने अपने घरों में ठंडे तवे पर रोटी सेकने की आदत डाल दी। बच्चे को कहते हैं भाई अरे बेटे ऐसा कर रहा है, अच्छा बेटा आंख निकालता है कि क्यों अब्बा को रोटी के लिए तवा सेकने की मशक नहीं हुई। कि तवा कब कौन से तवे पर रोटी डालने की उसका अंदाजा नहीं है, उसका अंदाजा नहीं है। तो जिस समय फोड़ा होता है फोड़ा, डॉक्टर उसको यूं नहीं काट डालता, उसको पकाता है, खूब पक जाए उसके बाद दस्तक चलाता है। कच्चे फोड़े को काटेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे ठंडे तवे पर रोटी नहीं सेकी जाती। हम मोहल्ले में कहते हैं ऐसा कर दो, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, बेटा नहीं सुनता पराया क्या सुनेगा। तो आमिर साहब ने उनको कुछ नहीं कहा, छह दिन तक तवे को गर्म किया, सातवें दिन में रोटी डाली तो एकदम जैसे बाप पड़ा ना, उनकी आंखों में से टप 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 आंसू गिरने लगे। और आमिर साहब से कहने लगे क्या हुआ। आमिर साहब ने पूछा क्या हुआ कि देखो ये माँ बाप की क्या बात पड़ी जा रही है, हमने तो अपने माँ बाप के साथ ये किया। आमिर साहब बहुत होशियार थे, जैसे ही बॉल आया कैच कर लिया उन्होंने, जैसे ही बोलाया अब तक कुछ नहीं कहा था, अब जैसे दिल में एहसास हुआ और के ऐसा हमने किया है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपसे भूल हुई अल्लाह से माफी मांग लो और अपने घर वालों को खबर दे दो, ओल्ड हाउस में से उनको घर ले आए। कहा काम पूरा हो जाएगा। आमिर साहब ने कहा काम पूरा हो जाएगा, हम लोगों को अल्लाह से काटेंगे नहीं, अल्लाह से जोड़ेंगे। भाई उसको माहौल नहीं मिला था इसलिए ऐसा हो गया था। अब माहौल मिल गया तो हम ये नहीं कहेंगे तू तो ऐसा है। अरे भाई अल्लाह बड़े माफ करने वाले, तो माफी मांग ले। तो एकदम ये इस माहौल ने इनके तवे को गर्म कर दिया, दिल के अंदर बेदारी पैदा कर। हम लोग एक जमात में गए जयपुर, तो वहाँ स्कूल के बच्चे थे और तो उनको तीन दिन के लिए वसूल किया। तो उनको कहा बस्ती वालों को इनको अमीर दे दो। ना बाबा जी हम इनको अमीर नहीं देंगे, अरे ये तो सर के बाल के खाल निकाल देंगे हमारे, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। तो इन्होंने अमीर नहीं दिया, वो बच्चे कैसे होंगे आप अंदाजा करो। हमारी जमात में दो साथी थे, मशवरा ये हुआ ये दो सारी जमात लेकर चले जाए। वो जमात लेकर गए, हम दुआ में लग गए थे अल्लाह अल्लाह खैर सल्लत, पता नहीं कैसे लौटेंगे। ये दो तौबा करते हुए न लौटे, ये दो क्या करते हुए न लौटे कि तौबा करते हुए। वो जब लौटे ना तो हम दूसरी मस्जिद मुंतकिल हो गए थे। तो अमीर वो बच्चे दरवाजे में दाखिल हुए और कहने लगे अमीर साहब हमने तौबा कर ली, आप गवाह रहे ना हमने तौबा कर। अरे भाई क्या बात हो गई एकदम, ये कहा हम जब जा रहे थे तब नहीं देखा था, हमारे साथ कोई अमीर आने को तैयार नहीं था, लेकिन हमारे अमीर साहब जो जमात में गए थे उन्होंने हमको किताब में सुनाया ये तो हमें पता चला कि हम तो कितनी गलत जीवन जीते हैं। तो हमने वहां भी तौबा कर ली और आप भी गवाह रहे ना हमने इस तरह की तालीमों ने हजारों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। अल्लाह के रास्ते में ये एक माहौल में ले जाया जाता है, एक माहौल में अल्लाह पाक उस माहौल में उसकी तरबियत करते हैं। एक ईमान वाला संभली हुई जिंदगी जीने वाला बन जाता है, और रिवाजी नहीं। जो रिवाजी जीता है वो इज्तिमा में आता है टोपी पहन लेता है, और रिवाजी नहीं होता वो हर हाल में टोपी वाला होता है। कि मैं कि मेरी मौत इस हाल में नहीं आनी चाहिए कि मैं बेईमान दिखता हूँ। एक मैं गैर ईमान वाला जैसे जीता है मैं ऐसा दिखूं, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। मैं मरूं तो मैं ईमान वाले की शक्ल के साथ मरूं। मौत तो कभी भी आनी है, आदमी को यह एहसास यहाँ से लेकर यहाँ तक मुसलमान बना देता है। वरना मुसलमान ऐसा जीता है जैसे पता भी ना चले, इसको पूछना पड़ता है। बहुत मरतबा कुछ कहीं होते हैं ट्रेनों में तो अपने उनको सलाम नहीं करते हैं, पता नहीं ईमान वाला है गैर ईमान वाला। बहुत देर के बाद कभी वो आते जाते सलाम कर, अच्छा हम भाई आपको गैर ईमान वाले समझ रहे थे, माफ करना, अच्छा वो आपने सलाम किया तो पता चल गया। हाँ ये पता नहीं कौन किस हाल में जीता है कि ये रिवाजी मुसलमान है, माहौल का मुसलमान है। कौन सा मुसलमान है कि अपने हुलिये को बदल दिया, अपने शक्ल ये माहौल का मुसलमान। वो ऐसा है कि हम तो उधर के हवा हो जिधर की, हम तो उधर के हवा हो। और किताबों में ऐसा लिखा कि अगर वो ऐसा ही जिएगा तो फिर उसके अच्छे मरने की आशा छोड़ दो, क्योंकि हजरत उमर ये फरमाते थे कि जो जैसा जिएगा ऐसा मरेगा। कमा तहयाउन तमूतून व कमा तमूतून तुबासून, ऐ लोगों तुम जैसा जियोगे ऐसे ही मरोगे। अगर वो इन चीजों का अच्छा जीने का आदि बन गया तो जब तक इस दुनिया में रहेगा अल्लाह का रहम करम उसके साथ होता चला जाएगा, अल्लाह का रहम करम। और जिस दिन मरेगा तो उसका मरना अच्छा हो जाएगा। इन इस्तीमात के जरिए से हर एक को ये फिक्र दिला रहे हैं, ओ भाई आपका चिल्ला हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे आपका चिल्ला लेकर, आपके जर में हम लेकर क्या करेंगे। भाई हमसे पांच बच्चे हमारे नहीं रखे जाते तो हम डजन को कहां रखेंगे। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से ये जिम्मेदारी ना होती तो कोई किसी के साथ न जाता जमातों में, हाँ जमातों में लोग कैसे चलते हैं बात पता है,
दामाद बनकर चलते हैं। कैसे बनकर चलते हैं, जमाई को देखा है, जमाई जमाई राजा को ऐसे दामाद बनकर चलते हैं, दामाद बनकर
हाँ ऐसा वट वट मारते हैं। लेकिन हमें सब बेचारे होते हैं, अच्छी बात जी ठीक है, अच्छी बात, अच्छा बेटा ऐसा ही करेंगे। क्यों, तो उसको समझाया गया कि इन बच्चों को हमें एक रुख पर ले जाना है, तो वो उनके सब के नखरे वो अपने बेटों का नहीं कर पाता, लेकिन इनके लिए उनके अब्बे तो पैर लंबा करके खर्राटे ले रहा है, सो रहा है रात को, और उसके अमीर साहब उठकर कह रहे हैं अल्लाह पाक इब्राहिम को लाया हूँ, अल इस्माइल को भी तश्किल करके लाया हूँ, और याकूब को भी लाया हूँ, यूसुफ को भी लाया हूँ, अल्लाह दिल पलटाने वाले आप हैं, अल्लाह इसके तो दिल को पलटा दे और उसको तो ऐसा बना दे कि अपने माँ बाप की ठंडक हो जाए, और अल्लाह पाक इसको ये दुआ करता है रात में। और उसके अब्बा कैसे सोए, कैसे सोए उसके अब्बा, पैर लंबे करके खर्राटे ले रहे हैं। अगर ये दिन में एक दूसरे की हमदर्दी ना रखी होती तो कोई किसी को भाव ना पूछता, तुम कल जाते हो तो जाओ, मुझे लोग यूं कहते तुझे कल जाना हो तो जा, हमें क्या पड़ी है, कल मरता हो तो आज मर, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता, ऐसा कोई नहीं करता। क्यों, कि हमें अल्लाह ने भाई बनाया है, एक दूसरे का भाई बनाया। हमारे नबी ने फरमाया तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करो जो अपने लिए पसंद करते हैं। इसलिए एक एक के पास आकर मन्ना समझ आता, भाई साहब कोई डांटता देता है, कोई भगा देता है, कोई कड़वी कसीली सुनाता है, और कोई 19-20 करता है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा करते हैं, तो क्योंकि हमारे दिन में हमदर्द है। और कल कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देना है। अगर ये बात ना होती तो कोई नहीं जाता, कोई खैरियत पूछने किसी के नहीं जाता। अब एक अहमदाबाद में हम लोग थे तो अहमदाबाद के जोनों की जमातें चली, ओ हो 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 हो, उम्मत के अंदर भी में जोनों की जमातें चलती है, कहाँ चलती है, देहातों में, ऐसे देहातों में जहाँ मुसलमान है और उनका कोई पुरसान्याल नहीं। वो जमातों ने कारदारी सुनाई तो क्या हम खेतों में ठहरे, हमने पूछा टेंट नहीं ले गए, कहा जी हमारा टेंट बहुत भारी था, तो फिर हमने प्लास्टिक लिया था, एक बिछाते थे एक को ओढ़ते थे, ऐसे लेकर गए प्लास्टिक, कौन सा आजकल लालस होता होगा खेत में ठंडी के दिनों में, अभी तो ठंडी कम हो रही है, उनके वहां ठंडी बहुत ज्यादा थी, कौन सा लालस होता होगा के अपने घर में अब मजे से सोने वाले खेत में सोए, 17 जगह पर 17 कयाम किया, 17 के 17 खेत में। मैंने उनसे पूछा कि कैसी गुजरी, कहा हमें रहने सहने में खाने में कोई दुश्वारी नहीं थी, सबसे ज्यादा दुश्वारी इस्तिंजे में थी। मैंने कहा क्या हुआ था, कहा कोई हमें इस्तिंजे के लिए, इस्तिंजे कोई हम कहां जाएंगे, खेत में जाते थे तो कोई खेत वाला हमें इस्तिंजा नहीं करने देता था, एक खेत में गए इस्तिंजे से फारिग हुए तो मालिक आ गया, उठाओ अपने हाथ से उस गंदे को उठाओ। ये इस जमाने का लाडला अपने घर का, अपने माँ का दिल का टुकड़ा, ये अल्लाह के निस्बत पर पखाना उड़ा रहा है कि ये अल्लाह की निस्बत अगर ना होती तो कोई किसी को, ये कौन पढ़ा रहता, ये हमारे बुजुर्ग बूढ़े 80-80 साल के, 90-90 साल के, चला भी नहीं जाता, और इतने दिनों से ये आपके तो 2 दिन का इज्तिमा है, उनका 42 दिन का इज्तिमा है, हमारे सुबह के 22 इज्तिमा, हर इज्तिमे के 2-2 दिन, 44 दिन से पंडाल के नीचे सोए हुए, अक्सर उसमें से बीमार हुए, चालू सफर में सब इलाज के लिए गए, कोई यहाँ गया कोई वहां गया। ये अगर अल्लाह ने हमदर्दी न रखी होती कोई किसी के पास ना आता, एक हमदर्दी है इंसानियत की। हमारे नबी ने फरमाया मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, और हमारे दीन में हमदर्दी है कि ये ईमान वाला ऐसा जीने वाला बन जाए कि जिस जीने पर जब तक वो जिए इस पर अल्लाह का रहम और करम रहे, और जब ये मर्द इसका मरना अच्छा हो जाए तो उसके लिए वो अल्लाह के रास्तों में जाकर अपना दीनी मिजाज बनाए, अपनी दीनी फिक्र बनाए, और उस माहौल में 4-4 महीने गुजार कर ये उस जीने का आदि बन जाए, आदि। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि भाई जब तो वो वक्त लगा कर आए तो क्या करे, वक्त लगा कर आने के बाद वो अपने मकाम पर ऐसा माहौल बनाए जिसमें इसकी हिफाजत हो जाए। अगर ये अच्छा वक्त लगा कर आया और मकाम पर उसको ऐसा माहौल नहीं मिला तो इसकी सारी कैफियत खराब हो जाएगी। अरे भाई अगर एक आदमी 4 महीने लगाता है तो 8 महीने तो उसको घर में रहना है, अब 8 महीने जिस घर में वो रहेगा उस घर का माहौल नहीं, उस मोहल्ले का माहौल नहीं, उस बस्ती का माहौल नहीं है, फिर 4 महीने में जो रंग चढ़ा है 8 महीने में वो रंग उतर जाएगा, 8 महीने में वो रंग उतर जाएगा। भाई जिस घर में रहना है उस घर में 10 आदमी थे, उसमें एक ये 4 महीने में जाकर उसने रंग चढ़ाया, दूसरे 9 तो पुराने रंग वाले हैं, पुराने रंग वाले, तो भाई एक आदमी उस घर में कितना दिन टक्कर लेगा। भाई 1 लीटर गरम गरम पानी था उसको 9 लीटर ठंडे पानी में मिला दिया, तो अच्छा बताओ 1 लीटर गालिब होगा कि 9 लीटर गालिब होगा, अरे बोलो भाई 9 लीटर। तो वो बच्चा धीमी गति से उसके एक एक अमल छोड़ना शुरू हो जाएगा,
जिस मोहल्ले में हो गया उस मोहल्ले का एक बच्चा गया, बाकी पूरे मोहल्ले में आग लगी है गुनाहों की, खुराफात की, गंदगियों की। अब उसमें बेचारा एक चार महीने जाकर आया, कितने दिन तक कर लेगा? वो नहीं टिक सकता। फिर उसके पास शिकायत करते हैं तश्कील वालों से, मैंने चार महीने भेजा, क्या क्या फायदा हुआ, अब तो नमाज भी नहीं पढ़ रहा। बहुत सारे अब्बा को ये शिकायत होती है, हमने चार महीने भेजा था, क्या फायदा हुआ? ओ भाई, वो तो चार महीने में बुजुर्ग बनकर आया था, तहज्जुद गुजार, तेरे सड़े हुए माहौल में से गया था, गुनाहों माहौल, वहां तो वो बुजुर्ग बनकर आया था, लेकिन दोबारा जिस माहौल में आया उस माहौल ने दोबारा उसको सड़ा दिया है। दूध बहुत अच्छा था, वो बासी हो गया तो फट गया, वरना दूध तो बहुत जोरदार था, उससे जोरदार मिठाई बन जाती थी, लेकिन जहाँ तुमने रखा था वहाँ ये दूध फट गया, उसमें जरासीम पड़ गए। जिस घर में बेचारा चार महीने लगा कर आया वो घर गंदा, जिस मोहल्ले में रहना है वो मोहल्ला गंदा। हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि हम अपनी कोशिश करें कि हम ईमान वाले जिस माहौल में रहते हैं वहाँ फिजा ईमानी बने, इस्लामी फिजा बने, ताकि हमारा रहने वाला बच्चा उसका ये दीन और इस्लाम जाहिर हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा की फिजा बनाई थी, ऐसी जोरदार फिजा बनाई कि कोई गलत आदमी उसमें गलती के साथ रह नहीं सकता था। आपने देखा होगा कि मुनाफिक के लिए कहा जाता है कि मुनाफिक अपने निफाक को छुपाता था, ऐसा जोरदार माहौल बना। निफाक मक्के में नहीं था, निफाक मदीने में आया। मक्के में तो मुनाफिक यूं चलता था, यूं वो जिम वाला छोकरा नहीं चलता, जिम जाने वाला ऐसे चलता था निफाक, लेकिन मक्के में मदीने में उनको छुपना पड़ा। क्यों? कि सबका एकदम माहौल बन गया नेकी का, भलाई का, तो गुनाह वाला छुप ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। जैसे अभी हमारे वहां रोजों का माहौल हो, रोजों का माहौल, तो कोई आदमी को रोजा छोड़ने वाला खुल्लम खुल्ला खाना चाहे खा सकता है? उसको छुपना पड़ेगा, क्योंकि रोजों का माहौल बन गया तो बेरोजगार रह नहीं सकता, छुपना पड़ेगा। लेकिन नमाजों में ऐसा नहीं हुआ, बेनमाजी आराम से रहता है। क्यों? कि नमाजों का माहौल नहीं बना, नमाजों का माहौल नहीं बना, बेनमाजी आराम से रहता है। रोजों का माहौल बन गया तो बेरोजगार नहीं रह सकता, उसको छुपना पड़ेगा। अभी इज्तिमा का माहौल है तो इज्तिमा के अलावा की कोई हरकत कोई करे तो वो यहाँ करने की हिम्मत करेगा? अरे नहीं भाई, यहाँ तो माहौल हो गया। क्या माहौल आदमी को संभाला देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में हमारे नबी अलैहि सलाम ने जो हमें बातें सिखाई उससे हमारे बाजार का माहौल ऐसा हो गया था जैसे हमारी मस्जिद का माहौल। सुकुल मुस्लिमीन का मुसल्लाहुम, कि हमारे हालांकि किताबों में लिखा कि सबसे बदतरीन जगह जो है, बदतरीन जगह वो बाजार है, सबसे बुरी जगह वो बाजार है। बाजार के वहां सबसे ज्यादा अल्लाह का गैर बोला जाता है, तो उस जगह के लिए फरमाया कि हमारे बाजार हमारी मस्जिदों जैसे हो गए थे। हमारी मस्जिद जैसे मस्जिद में कोई गलत काम नहीं करता, ऐसे हमारी हमारे बाजार में नहीं करता, हमारी मस्जिदें हमारे बाजार जैसे होनी हो गई। कोई आदमी मस्जिद में भी मोबाइल शुरू कर देता है, वो मस्जिद में भी चीजें देखता है, मस्जिद में हरम में और हुजूर के रोजे पर जाकर वहां भी सेल्फी बनाता है कि बाजार की हरकतें मस्जिदों में आ गई और उनकी मस्जिद की चीजें बाजार में गई थी। इसके लिए कहते हैं कि हमारा माहौल ठीक हो जाए जिसमें हमें जीना है, उसके लिए सबसे पहले अपने आप को अच्छी सोच वाला बनाओ। अच्छी सोच वाली बनाने के लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं रोजाना तुम्हारी मस्जिद में मशवरा होता है, मस्जिद और जमात बैठती है, उसके साथ अपने आप को जोड़ दो। 24 घंटे में ये 5 मिनट का हर मस्जिद में मशवरा होता है। उस मशवरे में दो चीजें सोचते हैं, हर आदमी में कैसे दीन आए और पूरी दुनिया वालों में कैसे दीन आए। अगर एक आदमी अपने आप को उससे जोड़ देगा ना तो रोजाना उसकी फिक्रों में ताजगी होती चली जाएगी, ताजगी। वरना आदमी जो सुनता है, जो बातों के साथ बैठता है, धीमी गति से वो ऐसा ही हो जाता है। जैसी बातें कान में पड़ती है वो ऐसा ही हो जाएगा। तो अपनी फिक्र अच्छे रखो। किताबों में ऐसा लिखा है आदमी को चलाने वाली आदमी की फिक्र होती है, फिक्र आदमी के अमल की इमाम होती है। भाई आप सबने इज्तिमा में आने की फिक्र की थी तो आप इज्तिमा में आराम से आ गए। कुछ लोगों ने दूर बैठने की फिक्र की थी, वो दूर बैठे। फिर उठकर आ जाने की नियत की, वो आ गए। कुछ लोगों ने नहीं की, वो अभी भी पीछे बैठे। आपको कौन लाया? आपको आपकी फिक्र लाई। उनको कौन नहीं लाया? कौन उनकी बेफिक्री नहीं लाई। और अच्छा वही समझते होंगे कि हमने इतने बेफिक्री की, कोई बात नहीं। उनको नहीं पता हमने अपने पैरों पर कितनी कुल्हाड़ी मारी। किताबों में आता है जब मजलिस लगती है अल्लाह के फरिश्ते मजलिस को घेर लेते हैं। उन्हें क्या मिला? चलो मजलिस से कट कर रहे, अपने आप को फरिश्तों से उन्होंने काट दिया। किताबों में आता है जब मजलिस लगती है अल्लाह की रहमत उन पर उतरती है। 1 घंटा उनका भी हुआ, 1 घंटा आपका भी हुआ, उन्होंने अपने आप को अल्लाह की रहमत से काट कर उनका क्या मिला? उनका भी 1 घंटा गुजर गया, आपका भी गुजर गया। तो ऐसे इन नफे नुकसान को सोचने वाले कम होते हैं। आदमी को उसकी फिक्र चलाती है। तो वहां क्यों बैठ गए? कि मेरे मन में आता है मैं यहां बैठा हूं, کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو من کی بات مانتا ہے نا وہ اللہ کا بندہ نہیں وہ اپنے من کا بندہ ہے, کہ زندگی میں اپنے من کے چاہت کے مطابق کام کرنے والا ہوتا ہے. اسی کو سیکھنا ہے کہ من چاہیے نکل جائے اور رب چاہیے آ جائے. میں اجتماع میں آیا ہوں یہاں تو مشق کروں کہ مجھے کیسے اللہ نے رہنے کو کہا, یہاں تو اس کی کوشش کروں, لیکن یہاں بھی آدمی من چاہیے کرتا ہے. اپنی غمی میں خوشی میں تو کرتا ہی ہے, عبادت میں بھی من چاہیے کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلے اپنی فکر کو اچھی بناؤ. اس فکر کو اچھی بنانے کے لیے روزانہ ہماری مسجدوں میں مشورہ ہے. 24 گھنٹے میں ہم پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں سنتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں. جو آدمی جن جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ایسا ہو جاتا ہے. جیسا سنگ ویسا رنگ, جو وہ سنگ تھے وہ رنگ. جیسوں کے شرابیوں کے ساتھ رہتے رہتے آدمی شرابی ہو جاتا ہے, کبابیوں کے ساتھ رہتے رہتے کبابی ہو جاتا ہے, تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ بزرگ بن جاتا ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہ بنے, ہم تو ادھر کے ہو, اچھے دوستوں کو اپنا دوست بناؤ. کتابوں میں آتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ, اپنے دوست کے دھرم پر ہوگا. دوست جس وچار دھارا کا ہوگا اس کی وچار دھارا اس کی سوچ بھی ایسی ہوگی. اس لیے فرمایا فلینظر بمن یتخلل, خوب غور کر لو کہ تمہاری دوستی کس سے ہے. آپ نے دوست اس کو اس لیے بنایا کہ تم جو عادتیں چاہتے ہو وہ اس میں ہے, وہ ایسی ہی ایکٹنگ والا ہے, ایسی انداز والا ہے, ایسی باتوں والا ہے, اس لیے تم نے اس کو دوست بنایا. اس کے علاوہ تو کیوں نہیں بنایا, تو وہ اس کی حرکتیں ہمیں اچھی لگتی ہے. تو آدمی ہوتے ہوتے آدمی اپنے دوست جیسا بن جاتا ہے. اس لیے حکم ہے کیسے کو دوست بناؤ گے, خوب غور کرو کس کو دوست بناؤ گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد والوں کو دوست بنا لو, کہ روزانہ مشورے میں اپنے آپ کو بٹھاؤ, اس سے ہم سچوائی لے رہیں گے. کیسے رہیں گے بولو, محفوظ رہیں گے, سنبھلے ہوئے رہیں گے. ورنہ جن لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہو جائے گی ایسے ہی ہو جائیں گے. اس لیے ہماری حفاظت. دوسرا نفع کیا ہوگا پتہ ہے, دوسرا بڑا نفع یہ ہوگا کہ جب اس مشورے میں اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے سوچا جائے گا, تو سارا کام تو ہم نہیں کر سکیں گے. لیکن ہماری مسجد کے مشورے والوں نے سوچا 4 مہینے کی جماعت بنانے کا, چلے کی جماعت بنانے کا, 3 دن کی جماعت بنانے کا, اور ملکوں کی جماعت بنانے کا, اور محلے کے سارے گھروں میں دین کے زندہ ہونے کا. ہم تو اس میں سے تھوڑا ہی کریں گے. اس مشورے میں ہم بیٹھ گئے. اب اللہ پاک اس مشورے کی برکت سے جتنے کام بھلائی کے کروائے گا ان سب میں ہمارا حصہ ہو. ہم بیرون نہیں گئے لیکن بیرون کی جماعت میں میرا حصہ ہے. میں 4 مہینے میں بھی نہیں گیا لیکن اس 4 مہینے کی جماعت میں میرا حصہ ہے. ہم ابھی چلے میں نہیں گئے لیکن چلے نہیں, کیوں کہ جب اس کا مشورہ ہوا تھا میں بھی اس میں تھا, اس کو سوچنے میں بھی تھا. تو مشورہ میں بیٹھنے والا کل قیامت کے دن اس کا ذخیرہ بہت بڑا ہوگا. ایک تو اس کی حفاظت ہو جائے گی اور دوسرا اس کا بڑا ذخیرہ ہو جائے گا. اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کے راستے میں جا کر اپنے مزاج کو ٹھیک کرے, طبیعت کو ٹھیک کرے, اور آنے کے بعد وہ سنبھلا ہوا رہے. سنبھلا ہوا رہے اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو مسجد سے باندھ دے. کس سے باندھ دے بولو, مسجد سے. کتابوں میں آتا ہے اللہ روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ پر اتارتے ہیں, پھر وہ بیت اللہ کی رحمتیں پوری دنیا کی مسجدوں میں منتقل ہوتی ہے. جس کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے وہ مسجد سے اس رحمت کو لے کر جاتے ہیں. اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں ادھر ادھر اپنے آپ کو باندھنے کے بجائے ہر آدمی اپنے آپ کو مسجد والا بنائے, روزانہ مسجد کے مشورے میں جڑے. تو آپ بھی طے کرو کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ہم اپنے آپ کو ضائع اور برباد نہیں کریں گے. دیکھو کسی کا نقصان نہیں ہوگا, اگر کوئی کرے گا حضرت جی فرماتے تھے وہ پائے گا, اور جو نہیں کرے گا یہ فرماتے تھے وہ پچھتائے گا. ہم اپنے آپ کو پچھتانے والوں میں نہ بنائیں, اپنے پیروں پر کلاڑی نہ ماریں. ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ میں ایمان پر ہوں, میں اسلام پر مرنا چاہتا ہوں تو میں اچھا جیون جیوں گا تو میں اسلام پر مر سکوں گا. اس کے لیے روزانہ میں اہتمام سے جی چاہے نہ چاہے اپنے آپ کو مشورے میں بٹھاؤں گا. بٹھاؤ گے انشاءاللہ. کون کون بٹھائے گا بھیا, دور بیٹھنے والے بھی بٹھائیں گے؟ اچھا, اللہ توفیق دے, قبول فرمائے. اور آگے کیا کریں گے؟ اور آگے یہ کریں گے کہ جو فکر ہم نے اپنے لیے کی وہ فکر ہم ایک ایک آدمی کے لیے پسند کریں گے. ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ہم عالمی نبی کی امتی ہے, ہم اپنا اپنا جیون جی کر مر نہیں سکتے کہ میں جی لوں اور مر جاؤں. یہ اس امتی کی شان نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم، ایک جسم میں ایک آنکھ ہے، اگر وہ درد کرے تو اس کے لیے پورا جسم محسوس کرتا ہے، ایک انگلی درد کرے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، ایسے ہم سب دنیا میں بسنے والا ایک ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو. اللہ نے ہم الگ الگ خاندانوں کا بنایا، الگ الگ برادریوں کا بنایا، تو الگ الگ خاندان اور برادری اللہ نے فرق کرنے کے لیے نہیں بنایا، یہ فلاں ملک کا ہے، فلاں ملک کا، یہ فلاں صوبے کا ہے، یہ فلاں صوبے کا، صوبے اور یہ جتنے ہیں وہ پہچان کے لیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہمارے وہاں عزت والا تو وہ ہے جو تقوی والا ہوگا، اس لیے ہم یہ نہ کہیں فلاں جگہ کا ہے یا فلاں جگہ کا ہے، وہ کلمے والا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے وہاں مجھ سے زیادہ اس کی عزت ہو. ارے بھائی بلال حبشی کالے تھے اور یہ ابو الحب گورا چٹا ہٹا کٹا مشنڈا تھا، بھاری برکم جسم والا تھا، لیکن اللہ کو نہیں پسند تھا. اس کو ایسے نکال کر پھینک دیا جیسے دودھ میں سے مکھی نکال دی. اتنی بڑی رشتے داری حضور کا سگا چچا اور یہ بلال حبشی کالے کا لوٹے تھے، لیکن اللہ کو لاڈلے تھے، اللہ کو پیارے تھے. تو کسی کے چہروں سے کسی کو نہ تولیں، کسی کی کرسیوں سے نہ تولیں، کسی کے پیسوں سے نہ تولیں. پاپ مالدار آ گئے تو سیلوٹ مارتے ہیں اور غریب کا بچہ گئے بھائی جل سائڈ پر بیٹھ. نہیں بھائی نہیں، ہم کسی کو کرسی سے نہیں تولیں گے. آج کل لوگ کرسیوں سے لوگوں کو تولتے ہیں، پیسوں سے تولتے ہیں. ذرا مالدار ہو گئے تو سب دوستی کرتے ہیں، غریبوں سے دوستی کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. حالانکہ دین کا ساتھ دینے والے اکثر غریب ہوتے ہیں، اکثر دین کا ساتھ دینے والے غریب ہوتے ہیں. اور غریب لوگ مالداروں سے جنت میں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو ہم غریبوں سے نفرت نہ کریں، ہم ان کو ان سے قریب ہوں، ان کو قریب کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے لیے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی مسکین بنا دے اور میرا حشر مسکینوں کے ساتھ فرما. کتابوں میں آتا ہے، کتابوں میں کہ کوئی غریب کل قیامت کے دن یہ حسرت نہیں کرے گا کہ میرے پاس کیوں مال نہیں تھا. اللہ ان سے معافی مانگے گا، قیامت دن اللہ معذرت چاہے گا کہ میری حکمت اور مصلحت تھی میں نے تم کو غریب رکھا. اللہ معذرت چاہے گا ان غریبوں سے. اور کوئی مالدار ایسا نہیں ہوگا جو نہ پچھتائے، سب پچھتائیں گے، کیونکہ دنیا کے حلال کا حساب ہے اور اس دنیا کے حرام کا عذاب ہے. تو ہم ان غریبوں کو ہلکا نہ سمجھے، ان کے پاس اللہ ملے گا. مولانا علی ایسا فرما دیتے غریبوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ، غریبوں میں تمہیں اللہ ملے گا. اللہ ان کے پاس کچھ نہیں سوائے اللہ کے، اللہ ہی اللہ. کون بولو؟ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. تو ان کو اپنی محنت کا میدان بناؤ. یہ دعوے نہیں کریں گے ہم یہ ایسا کر دیں گے، میں نے ایسا کہہ دیا ہے، میں وہاں بھیج دوں گا، نہیں ہم ایسا. وہ کہیں گے جی بھائی ہمارا تو اللہ ہے. ایک جماعت پیش ہوئی بزرگوں کے پاس، اس کا 50,000 خرچہ لے کر آئی. بزرگوں نے کہا اگر تم تھوڑا خرچہ بڑھا دو تو فلاں ملک کا تقاضا پورا ہو جائے گا، وہاں آپ کی جماعت چلی جائے گی. تو سب جماعت بیٹھی تھی تو ایک چھوکرا بولا چھوٹا سا کہ جی ان شاء اللہ ہم تیار ہیں اس کے لیے. اچھا ایک جھٹکے میں وہ تیار ہو گئے. تو میں نے اس کو بعد میں پوچھا بھائی تو نے ایک سیکنڈ میں سب سے پہلے بولا کہ جی مولوی صاحب مجھے تو 50 بھی اللہ سے مانگنے ہیں اور 75 بھی اللہ ہی سے مانگنے ہیں. کہ ان کی نظر اللہ پر ہوتی ہے. کس پر ہوتی ہے؟ اللہ ہی اللہ. یہ گناہگار بھاگاگار کو نہیں جانتے کہ ہم اللہ سے کہیں گے مانگو اسی سے جو دے خوشی سے کہے نا کسی سے. جنید نے چائے کی پیالی پلائی، ان دو ساتھیوں میں آ کر پوچھتا ہے مول صاحب چائے ٹھیک تھی؟ او بھائی تو بھجتی کرتا ہے کہ میں نے مول صاحب کو چائے وائی پلائی ہے. آپ دیکھ لو یہ سیٹھیے لوگ آ کر ایسا پوچھتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک تھا نا. ہاں بھائی ٹھیک ہی تھا، کیا کو تو پوچھتا ہے بھائی. تو یہ ہوتا ہے، اس لیے غریبوں کو اپنا دوست بناؤ. اکثر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب مال کی ہمیں توہین کرنی ہے، نہ ان کی اللہ نے جو جگہ دی ہے وہ. لیکن اکثر آدمیوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ مالداروں سے دوستی ہوتی ہے، غریبوں کو اپنی محنت کا میدان نہیں بناتے. مالدار آ کر بیٹھ جاتا ہے اس سے تو خوش ہوتے ہیں، غریب کا سوپر ساتا ہے اس کے پاس آ کر کوئی نہیں بیٹھتا. ان کو اپنی محنت کا میدان بناؤ. ان کو ماں اللہ ایسا فرما دیتے اس میں تمہیں اللہ ملے گا. اس کے لیے اپنی جو تم نے فکر کی وہ فکر تم ایک ایک ایمان والے کی کرو. یہ جو بےچارے قصبوں پر لوگ ہیں وہ ان کے پاس دنیا بھی نہیں ہے، ان کے پاس دین بھی نہیں ہے. ان کو ان کے بننا سمجھ، ان کے پاس دنیا نہیں ہوتی نا تو ان کو کوئی بھی خرید جاتا ہے، کوئی بھی خرید لیتا ہے. دیکھو اکثر مرتد ہونے والے ملیں گے وہ غریب لوگ آپ کو ملیں گے. کتابوں میں آتا ہے، کتابوں میں کہ فقیری آدمی کو غریب بنا دیتی ہے، فقیری آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے. قاد الفقر یکون کفرا. یہ تو ان کے پاس بےچاروں کے پاس مال بھی نہیں ہے، ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، جہالت ہے.
جہالت بھی کفر کی صفت ہے. اس لیے اپنی محنت کا میدان ان کو بناؤں کہ جو تم نے اپنی فکر کی وہ ایک ایک ایمان والے کی فکر. اس ایمان والے کی فکر کے لیے کیا کرو کہ روزانہ اپنی مسجد میں تعلیم سناؤ ان کو. یہ بات ایک تو ان کو مسجد میں سناؤ کہ ایمان والا کیسا ہوتا ہے, اور اس تعلیم میں لانے کے لیے ایک ایک ایمان والے کے گھر پر جاؤ. جس کی بڑی توفیق اللہ نے آپ کو دی وہ توفیق تم ایک ایک گھر والے کے پاس جا کر کرو, ایک ایک گھر کے پاس. اس کے لیے روزانہ ڈھائی گھنٹے لگاؤ. یہ جو تم نے فکر کی اس کے ڈھائی گھنٹے لگاؤ, ڈھائی گھنٹے لگا کر ایک ایک ایمان والے کے گھر پر جاؤ, تاکہ جو تم مسجد میں فکر تم نے کی وہ ایک ایک ایمان والے کے گھر میں پہنچ جائیں. اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹھ کر بات کرو. کہاں بیٹھ کر بات کرو؟ ان کے گھر میں بیٹھ کر بات کرو, تاکہ ان کے گھر کے سارے مرد اور ساری ان کو اللہ سمجھانے کی چیز ہے, اور ان کو آخرت سمجھانے کی چیز ہے, ان کو ایمان سمجھانے کی چیز ہے, ان کو اللہ سمجھانے کی چیز ہے. ایمان والا کتنا قیمتی ہے وہ سمجھانے کی چیز ہے. پھر اگر ان کو اللہ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ یہ جان دے دیں گے, اپنا دین اور اسلام نہیں بیچیں گے. ہم ابھی سفر میں تھے, ایک ایک علاقے والے مجھے ملنے آئے ایک اجتماع میں, کہنے لگے کہ ہم پہلی بار اس طرح کے سمیلن میں آئے, پہلی بار, اس سے پہلے کبھی نہیں آئے. تو کیسا رہا؟ کہا جی ہم تو پہلی بار اس طرح آئے کہ زونوں کی جماعت پیدل چلنے والی ہمارے وہاں آئی تھی, تو انہوں نے دعوت دی کہ اس طرح کا اجتماع ہے آپ وہاں آ جاؤ, تو ہم آ گئے. تو انہوں نے جو اس سے پہلے بھی جماعت یہاں تھی انہوں نے ہم سے بات کی, تو ہمیں کچھ نہیں آتا. انہوں نے کہا ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا, ہم نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کوئی عمل آتا ہی نہیں ہے, تو کریں گے کیسے؟ پھر کیا ہوا کہ جب یہ لوگ گئے نا تو دوسرے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے, اور انہوں نے کہا کہ تم تو یہ نہیں تھے پہلے, تم ایسے تھے, تم ایسے تھے, تو ہمارے پاس آ جاؤ. تو انہوں نے کہا سنو ہمیں چاہے کچھ نہیں آتا ہے, تم ہمیں خریدنے آئے ہو, ہم بکیں گے نہیں, ہم نے سن لیا ہے کہ ایمان والا کیسا ہوتا ہے, ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے اسلام پر مرنا چاہتے ہیں, اس لائن میں ہمارے پاس کوئی بات نہیں کر رہا ہے. یہ زونوں کی جماعتوں کی برکت کہ ایمان والے کو ایمان پر جمنے کا ذریعہ بن گیا. جب ہم اللہ کے, یہ ہمارے محلے میں ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں سنتے ہیں, ایک ایک گھر میں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں شروع ہو گئی. جب ہم گھر میں جا کر بات کریں گے نا تو یہ ایمان والے ایک ایک گھر میں ایمان کے چرچے شروع ہو جائیں گے. ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں ہر پندرہ دن میں ایسا ایسی محنت کا نقشہ بناؤ کہ 100% تمہارے محلے کی ملاقاتیں ہو جائے. کہ ان کے پاس ان سے جب جاؤ تو کہو بھائی ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے گھر میں بیٹھ کر بات کرو, اور پورے 6 نمبر کی بات کرو, اپنے بچوں کی فکر دلاؤ, گھر کے اندر مسرات کی فکر دلاؤ. جب تم گھر میں بیٹھ کر بات کرو گے ان کے گھر کے سارے مرد تمہاری بات سنیں گے, عورتوں تک تمہاری بات پہنچ جائے گی. تو تمہارے پاس جو فکر تھی وہ ایک ایک گھر میں پہنچ گئی, ایک ایک گھر میں پہنچ گئی, تو ان شاء اللہ پورا گھرانہ وہ دیندار بنے گا, پورے گھرانے میں فکریں آ جائے گی. اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ جو فکر آپ نے اپنے لیے کی وہی فکر محلے کے ایک ایک ایمان والے کے لیے کرو, ایک ایک ایمان والے کے پاس جاؤ. اور خاص کر جو غریب مسلمان ہیں, جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں اب, اور ایسے دیہات جن دیہاتوں میں مسلمان بستا ہے اذان نہیں ہوتی ہے, وہ زیادہ قابل رحم ہیں. اپنے دوسرے گشت کے ذریعے سے ایسی بستیوں کو کور کرو. آپ دوسرا گشت ایسی مسجدوں میں کلنا بھول جاؤ جہاں مسجدوار جماعت بنی ہوئی ہے. ایسی بستیوں میں مت جاؤ, ایسی مسجدوں میں مت جاؤ, ایسی بستیوں میں دوسرے گشت کے لیے نہ جاؤ جن بستیوں میں مسجدوار جماعت بنی ہوئی ہے. اور اپنے 3 دن ایسی بستیوں میں نہ جاؤ جہاں مسجدوار جماعت بنی ہوئی ہے. اپنی 3 دن کی جماعتیں, اپنے دوسرا گشت ایسی بستیوں کو محنت کا میدان بناؤ جہاں مسلمان ہیں اور ان کے پاس کوئی کیا ٹھکانا نہیں ہے, یا وہاں مسجدوار جماعت نہیں ہے, یا وہاں کے کام کی کوئی شکل نہیں ہے. آپ کے پاس ان بستیوں کو کور کرنے کے لیے دوسرا گشت ہے, آپ کے پاس ان بستیوں کو دیندار بنانے کے لیے 3 دن ہیں. اس لیے گزارش ہے کہ اپنے ایک تو روزانہ ہمارے 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے اپنے محلے کو کور کرو, اور اپنے 2 گشتوں کے ذریعے سے, پہلے گشت کے ذریعے سے اپنے محلے والوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ جمع کر کے یہ جو فکریں ہم کو دی جا رہی ہے ان فکروں کو تازہ کرو کہ پورے محلے والے اس فکروں میں شریک ہو جائیں. انشاءاللہ اس طرح سے آپ کے چلنے پھرنے سے آپ کا محلہ دینداری والا بن جائے گا, آپ کے محلے میں دین اگ جائے گا. ورنہ آپ یہ مطمئن نہ رہیں کہ آپ سنبھل گئے تو آپ کے محلے کی بے دینی آپ کو نقصان نہیں کرے گی. اگر محلے میں بے دینی پھیلی ہے تو محلے کے بے دینی آپ کو نقصان کر دے گی. ارے آپ دیکھو, دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے جو گھر بنایا وہ بیت اللہ کو بنایا.
बैतुल्ला हिदायत का मरकज है, हिदायत का मरकज, वहाँ हिदायत है। लेकिन वहाँ जब अतराफ में गंदगी आ गई, बुत परस्ती, और कोई बुत परस्ती को साफ करने वाला नहीं था, तो वो बुत परस्ती दाखिल होते होते बैतुल्ला जैसे बैतुल्ला में आ गई, बैतुल्ला भी उससे बच नहीं सका। तो हमारे मोहल्ले में तो दीनदारी है, हमारे घर में दीनदारी है। अगर हमारे अतराफ के मोहल्लों में नहीं हुई तो अतराफ के मोहल्लों में से हमारे मोहल्ले में आएगी, और अगर हमारे मोहल्ले में दीनदारी नहीं हुई तो वो हमारे मोहल्ले में से हमारे घर में आएगी। माहौल ऐसे होता है जैसे ठंड, ठंड आई है सबको लगती है, सबको लगती है। तो जैसे ठंड सबको लगती है, गर्मी सबको लगती है, ऐसे गंदा माहौल अगर बना तो ये गंदा माहौल सबको लगेगा, कोई बच नहीं पाएगा। आप देखो अच्छे अच्छे दीनदारों के बच्चे गलत रुख पर जा रहे हैं, अच्छे अच्छे दीनदार घरानों के बच्चे गलत रुख पर पड़ गए। क्या हुआ कि वो बच्चे को माहौल नहीं मिल रहा है। इसलिए अपने मोहल्ले का माहौल, अपने अतराफ के मोहल्लों का माहौल, पहले गश्त के जरिए से, दूसरे गश्त के जरिए से, तो ये सब जगह वायरिंग हो जाएगा। और इन सब फिक्रों के साथ वो फिक्र करते करते हम अपने घर की फिक्र भी करें। अल्लाह के नबी सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया है, नबी जी अपनी फिक्र करो और अपने घर वालों की करो। कितनी करो? कि हमारे घर वाले जहन्नम की आग से बच जाएं, इतनी करो। हाँ, हम ये होता है कि सबके फिक्र में ऐसे लग जाते हैं कि अपने फिक्र भूल जाते हैं। सारे जहां से बाखबर, अपने जहां से बेखबर। अपने घर की फिक्रें हमें करनी पड़ेगी। हमारे घर के फिक्रों में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो तुम्हारी अच्छी सोच और फिक्र है, उस फिक्र में अपनी घरवाली को साथ ले लो। इसलिए कि अगर किसी की घरवाली बन गई तो उसका घर बन जाएगा। घरवाली को घरवाली कहते हैं, वाली, क्योंकि घर की वाली वही होती है। हाजी साहब पर हजन की चलती है, आपको शर्म आती होगी, शर्म आती है ना? हाजी साहब पर किसकी चलती है बोलो? हज्जन की चलती है, हज्जन की। आप बुरा ना समझे, घर में हमारी नहीं चलती, हज्जनों की चलती है। हजरत जी फरमाते थे एक मर्द का बनना, एक मर्द का बनना है, और एक औरत का बनना, एक खानदान का बनना है, एक नस्ल का और एक घराने का बनना है। हजरत फरमाते थे मर्द का दीन दरवाजे तक और औरत का दीन घर के अंदर तक। घर के अंदर जो जाएगा वो औरत के जरिए से जाएगा, हमारा तो दीन दरवाजे की चौखट तक रहेगा। हजरत फरमाते थे एक मर्द बना तो एक मर्द बना, और एक औरत बनी तो एक नस्ल और एक खानदान और एक घराना बन जाएगा। इसके लिए तो इसके लिए अपनी घरवाली को अपनी फिक्रों में शरीक कर लो। अगर वो तुम्हारे फिक्रों में शरीक हो गई तो वो आपके बच्चों को दीनदार बना देगी। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माँ के ताबे होते हैं, बच्चे हमारे ताबे नहीं होते, बच्चे माँ के ताबे होते हैं। हम किसी को पूछे भाई तुम्हारी जबान कौन सी है, कौन सी भाषा बोलते हो आप, तो हम क्या पूछते हैं, तुम्हारी पितृभाषा कौन सी है, ऐसा पूछते हैं। तो क्या पूछते हैं, तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है। फारसी में पूछते हैं तुम्हारी माधुरी जबान, अंग्रेजी में पूछते हैं तुम्हारी मदर टंग, कोई ऐसा पूछता है तुम्हारी फादर टंग कौन सी है। तो भाई क्यों, माँ की और अब्बा की बोली अलग अलग है, कहा ना एक ही बोली है, तो फिर आप माँ के क्यों पूछते हो, अब्बा की क्यों नहीं पूछते। कहती बोली से मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी माँ जैसा बोलता है कि अब्बा जैसा बोलता है, इसके अंदर असरात किसके हैं, उसके अंदर माँ के असरात होते हैं। हम एक जगह बैठे थे, एक आदमी बयान कर रहा था और कह रहा था कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। एक साथ बयान कर रहे थे तो दूसरे साथ ने कहा तुम गलत कह रहे हो, का फिर कहा माँ का सब बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ का पेट है। हमने पूछा कैसे माँ का पेट है, तो कहा ये डाई है, डाई यहाँ बच्चा बनता है, ये फर्मा है, ये साचा है, ये डाई है, बच्चा यहाँ बन रहा है। अगर ये पेट तकवे वाला है तो उस बच्चे में तकवे का असर होगा, ये पेट हया वाला है तो उस बच्चे पर हया का असर होगा, ये पेट अल्लाह के डर वाला है तो उसके अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा, कि ये पेट जैसे जैसे वाला है कि उस बच्चे पर उसके असरात होंगे। अब माँ के पेट में वो बच्चा है और वो माँ कानों से गंदा सुन रही है, वो माँ आंखों से गंदा देख रही है, वो माँ जबान से गंदा बोल रही है, वो माँ बाजारों में ऐसी घूम रही है और इस मशीन में बच्चे की पैदाइश भी हो रही है। ये फर्मा और ये डाई अपना काम भी कर रहा है, अंदर बच्चे की बनावट हो रही है और उसका अब्बा रोज दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक मेरी बीवी उम्मीद से है उसमें जुनेद बगदादी को बना दे, और वो माँ ऊपर से नीचे तक गंद ही गंद कर रही है, तो क्या इसमें जुनेद बगदादी बन जाएगा। अरे बोलो भाई जुनेद बगदादी भाई, ये फरमा ही गलत हो गया, इसकी तो डाई खराब हो गई, इसका तो सांचा खराब हो गया। क्या उसमें पैदा होने वाला उन गंदे असराब के साथ पैदा होगा, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि औरत मर्द से ज्यादा नेक होनी चाहिए, औरत मर्द से ज्यादा नेक होनी चाहिए कि उसके तकवे और उसकी पाकी का असर पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी औरत को अपनी फिक्रों में, अपनी विचारधारा में शरीक कर लो, अगर वो बन गई तो इंशाल्लाह घर को बना लेगी। बच्चों पर पकड़ उसी की है, हम तो कमाने जाते हैं घर के बाहर, लेकिन घर को वो चलाती है, और आगे जाते जाते औरत घर में ऐसी छा जाती है कि उसी की फिक्र घर में चलती है। अच्छा भाई बताओ, हमारे घर में बेटे का रिश्ता आया या बेटी का रिश्ता आया, बीवी चाहती है कि वो रिश्ता न हो और हम चाहते हैं कि वो रिश्ता हो जाए, तो अच्छा बताओ आखिर में हमारी बात पक्की होती है या औरत की बात पक्की पूरी होती है, वो रिश्ता हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा हम चाहते हैं ना हो और वो चाहती है हो ही जाए, तो क्या होता है वो रिश्ते में? जी काजी हो जाता है। का वो उसके अंदर ये तासीर है, अल्लाह ने उसको समझाने की ताकत दी है, गजब के समझाने की ताकत दी है, क्योंकि उसको घर चलाना है। क्या चलाना है बोलो? घर चलाना है। तो उसको अल्लाह ने फितरी तौर पर पांच बच्चे लड़कियां हैं, पांच बच्चे लड़के हैं, सबकी सोच अलग अलग है, वो पांचों लड़कियों को भी संभाल लेती है, पांचों लड़कों को भी संभाल लेती है। वही दस के लफड़े अब्बा के पास आ जाए तो अब्बा दस मिनट में गुस्से हो जाकर फट जाएंगे, क्या लफड़े आकर रखे हैं तुमने। लेकिन माँ सबको संभाल लेती है, वो घर की वाली, घर की मलका है। उन पांच बच्चियों के पांच दामाद आ गए और पांच लड़कों की पांच बहुएं आ गई, और सब अब 10 के 20 हो गए और सब अलग अलग मिजाज के हैं, लेकिन वो औरत उन पांच लड़कियों को भी संभालती है, लड़कियों के शौहरों को भी संभालती है, उन लड़कों को भी संभालती है, उनके बहुओं को भी संभालती है, और उसका शौहर का वो सब नहीं कर सकता। उसको समझाने की अल्लाह ने गजब की ताकत दी है, वो इनफरादी तौर पर जहन साजी करती है। आप देखो ना फिरौन, ये फिरौन के उसको किसी ज्योतिष ने, उसके काहिन ने कहा कि एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो तेरे राजपाट को खत्म करेगा, तेरे मुल्क को। तो उसने हजारों बच्चों उस खानदान के मार दिए। अल्लाह को उस बच्चे को पैदा करना था और उस बच्चा को बाकी रखना था, का दोनों के लिए अल्लाह ने पैदा होने के लिए और बाकी रखने के लिए किसको इस्तेमाल किया? औरत को इस्तेमाल किया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में बात डाली, संदूक में पैक करके डाल दे, संदूक में पैक करके डाल दिया। फिर उसके बाद वो तैरते तैरते फिरौन के दरबार में पहुंचा, जब वो दोनों मियां बीवी बैठे थे, संदूक खोली तो बच्चा निकला। पहला जुमला जो फिरौन की जुबान से निकला वो ये कहने लगा, ये वही बच्चा है जो मेरा मुल्क खत्म करने वाला है। तो बीच में बीवी आ गई, बीवी ने अगर कहा जी नहीं, ये वो बच्चा नहीं है, वो फैमिली वाले तो इस तरफ रहते हैं और ये बच्चा इस तरफ से तैरता हुआ आया है, इस तरफ से होता तो यूं तैरते हुए आता, ये तो दूसरी तरफ से आया। जहन बनाना शुरू किया, इतना जहन बनाया कि वो शौहर जब बीच में बीवी आ गई तो उस बच्चे को यकीन होने के बावजूद नहीं मार सका। एक मरतबा फिरौन उससे खेल रहा था, हाथ में उठाया तो उसने एक चमाता छोप दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, और उसको ऐसी हरकत की, कही अभी से मारता है, ये तो बच्चा है, बच्चा तो ऐसा ही करता है, कहीं उसका इम्तिहान ले लूंगा। अच्छा तुम इम्तिहान ले लो। इम्तिहान लेने के लिए उसने एक थाली में अंगारे मंगवाए और एक में हीरे मंगवाए, हम देखेंगे कि किस पर हाथ रखता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ हीरों पर रखने की कोशिश की, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अंगारे पर रख दिया, उन्होंने अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया तो उनको लुकड़न हो गई। अल्लाह को पालना पोसना था तो घरवाली के दिल ने उनकी मोहब्बत डाल दी कि ये बच्चे को मारने नहीं देना। तो बीवी आज बीच में आ गई, 40 साल तक वो बच्चा उनके घर में रहा जिसको मारने के लिए उन्होंने हजारों बच्चे मार दिए। क्या किसके समझाने से? क्या बीवी के समझाने से कि सब पूरी फौज उसने लगा दी थी, लेकिन वो है ना अकबर, कभी अकबर डरा नहीं कभी ब्रिटिश की फौज से, और घर गया तो डर गया बीवी के खौफ से, तो बीवी का खौफ ऐसा हो गया कि हजारों बच्चे उसने मार दिए, लेकिन अपने शौहर को वो शौहर बीवी को नहीं हरा सका। बीवी बीच में आ गई, उस बीवी को अच्छी विचारधारा की बनाओ, अच्छी सोच की बनाओ, अगर वो अच्छी सोच की हो गई तो तुम्हें भी अच्छा लेकर चलेगी और बच्चों को भी, वो घर वाली है, वो घर की मलका है, उसकी उसको अपनी सोच में ले लो। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी बीवी को अपनी सोच में लिया था, सबसे पहला अपनी बीवी को सोच में अपने साथ ले लिया।
जब उनका सीना चाक किया गया और शक के सदर हुआ तो अपने घर वालों को आकर सुनाया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अम्मी जान खदीजा रजी अल्लाह तआला ना उन्हें लेकर बरका इब्न नौफल के पास गई। जब बरका इब्न नौफल, वो बड़ा दिन वो जानने वाला था, उसने कहा किसी इनके साथ ऐसा हुआ, अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो फिर ये तो नबी है, ये तो नबी है, और आगे इनके बड़े भारी लोग दुश्मन हो जाएंगे और ये होगा ये होगा। ऐसी बातें कही हमारे नबी, कहने लगा अच्छा मेरे साथ ऐसा सब होगा। कहा जी हाँ आपके साथ। तो बीवी समझ गई अम्मी जान खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कि मेरा शौहर टेंशन ले रहा है, तो एकदम बीच में आ गई और कहने लगी ना 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 ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दावा किया उन्होंने, फिर दलील देना शुरू की क्यों नहीं होगा। इन्नका लतसिलुर्रहम, आप तो ऐसे लोगों में से हैं कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देते हैं। तकरीब दईफ, मेहमान नवाज है। तकसीबुल मादूम, आप रास्ता खोए हुए को रास्ता बताते हैं। तो इन वाला नवाई बिल हक, मजलूम की आप हिमायत करते, तकरीर करना शुरू कर दी। ऐसी दलीलें दी कि ऐसे ऐसे आप तो काम करते हैं, आपको ऐसा कैसे हो जाएगा। अपने शौहर को धारस बंधाई। सबसे पहला जो धारस बंधाने वाला वो घर की बीवी थी। अपनी बीवियों को अपने फिक्रों में शरीक करें। दूसरा काम, अगर घर में दीनदारी लाना चाहते हैं, दूसरा काम कि घर में अपने रवैये ठीक कर लें, रवैये ठीक कर लें। कि हम तालीम के हल्के में तो हजरत जी बनकर बैठ गए और पौने चौबीस कलाक तेरी मेरी चल रही है। अगर हमारे रवैये घर में खराब हो गए तो हम, अगर बीवी को हमने, बच्चों को हमने ये झंडा बात समझाई, हम घर से जैसे बाहर निकलेंगे बीवी 5 मिनट में हमारे चेहरे पर पानी फेर देगी। देखा तुम्हारे अब्बा को अभी तक घंटे से लड़ रहे थे और अब हजरत जी वाली बातें करते, बुजुर्गों वाली बात, 1 मिनट में हमारे चेहरे पर पानी फेर देंगे। बच्चे हमारे रवैयों को देखते हैं। हम अभी एक इज्तिमा में थे, एक लड़का आया और कहने लगा मैं अपने बाप का खलौता हूँ, लेकिन मेरे बाप से मुझे सख्त नफरत है। वो ऐसी गंदी हरकतें घर में करता है, मेरी माँ से लड़ता ही रहता है। तो बच्चे देखते हैं, हमारी नफरत उनके अंदर पैदा हो जाती है। इसलिए अपने रवैये, अल्लाह के नबी सलाम इमामुल अंबिया है, लेकिन अपने रवैये कैसे रखते थे। अल्लाह के नबी सलाम घर में जाते थे तो घर वालियों की रिवायत ही है, वो फरमाती है ऐसे मजे से घुल मिल कर रहते थे कि हमको ऐसा लगता था अब तो हमको छोड़कर जाएंगे ही नहीं। और जब अजान होती थी तो ऐसे चले जाते थे, हमको ऐसा लगता था हमको पहचानते ही नहीं। घर में जाए तो ऐसा ना कहें मैं घर में जाऊं इतनी देर है कोई चूं तो करे, हम ऐसा कहते हैं मजाले मेरे घर में कोई चूचा करे। तो भाई तू घर में बीबी का शोहर नहीं है, बच्चों का अब्बा नहीं है, तू तो पुलिस वाला है। पुलिस वाला चलता है तो भी किसी को लात मारता है, किसी को डंडा मारेगा, किसी को, उसको सबसे ज्यादा लोग बदगुआएं देते हैं। क्यों? तो लोगों को ना हैरान करता है। तो ये भी घर में जाता है पुलिस वाला बन जाता है। बच्चे सहमे सहमे रहते हैं, सहमे सहमे, तो बच्चों को प्यार नहीं देता। जब जाए तब बाय ऑर्डर, ए तो स्कूल गया नहीं गया, अबे ट्यूशन गया था नहीं गया था, बस इसके अलावा कोई बात ही नहीं है, खैर खैरियत की बात। तो फिर होते होते ऐसा हो गया कि अब्बा इस दरवाजे से दाखिल होते हैं और बेटा उस दरवाजे से बाहर जाता है, कि हम में और बच्चों में दूरी पैदा हो जाती है। अक्सर औलादें जो जाये हुई है वो हमारी सख्तियों की वजह से जाये हो गई। हम बच्चों को घरों में लाड़ प्यार दें, हमारे रवैये अच्छे करें, बीवी को लाड़ प्यार दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इतनी मोहब्बत देते थे, इतनी मोहब्बत, खाने साथ में बैठे निवाला मुंह में देते थे। हम में से कितनों ने निवाला दिया, उन्होंने गोश्त उठाया यूं बॉडी चर्न खाई, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वही उठाया और वहीं से खाई और बता रहे थे कि मैं वहीं से खा रहा हूँ। ये हमें और आपको तालीम देने के लिए कि बीवी लड़ने की चीज नहीं है। सबसे पहला दुनिया का रिश्ता बीवी का है। अल्लाह ने आदम और हव्वा को बनाया है और दुनिया में सबसे आखिर तक जो रिश्ता रहेगा वो बीवी रहेगी। तो हम बीवियों के साथ जन्नत में जाएंगे, बेटी के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ नहीं, बीवी के साथ। और सबसे ज्यादा झगड़ते भी उसी से हैं, वो हमारा लिबास है, वो झगड़े की चीज नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुमने बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी घरवाली के साथ अच्छा सलूक करे, उनके साथ अच्छे सलूक की हुक्म है। वाशरूहुन्ना बिल मारूफ, कल कयामत के दिन सबसे पहला बीवी के साथ का सलूक तोला जाएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम बीवी के साथ गुजरता है। उसके साथ तुम कैसे रहे थे, तो उसके साथ के रवैये। वो अम्मी जान ने गिलास उठाया, पानी पिया, अल्लाह के नबी सलाम ने प्याला उठाया और वही होठ लगाया जैसे अम्मी जान ने पिया था, और वही होठ लगाकर पी रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि देख मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ। तो ये मोहब्बत देने की चीज है, ये लड़ने की चीज नहीं। एक मरतबा अल्लाह के नबी सलाम ने अम्मी जान से फरमाया दौड़ लगाओगी, दौड़ लगाओगी, मेरी दौड़ लगाई,
तो अम्मी जान हल्की थी, हुजूर भारी थे, वो आगे भी निकल गई। दोबारा एक मरतबा मौका आया, फिर फरमाया दौड़ लगाओगी? कभी लगाएंगे। तो उस वक्त अम्मी जान भारी थी, अल्लाह के नबी हल्के थे, अल्लाह के नबी आगे निकल गए और कहा उसका बदला हो गया। उससे तू जीती थी, आज मैं जीता हूँ। ऐसे लाड़ प्यार की घर की फिजा होती है, बच्चों से लाड़ प्यार। हुजूर घर में जाते थे, हसन हुसैन को कहते थे चलो कुश्ती खेलो, तो दोनों कुश्ती खेलते, तो फिर एक जीत गया, शाबाशी दी। अम्मी जान कहने लगी तुम उसको शाबाशी देते हो, इसको नहीं? कहते कि जिब्रैल खड़ा है, जिब्रैल भी इसी को शाबाशी देते हैं। हम कहते हैं घर में जाते हैं कई को मस्ती करता है, अरे भाई ये मस्ती नहीं करेगा क्या इसका दादा मस्ती करेगा? अरे भाई ये छोकरा मस्ती नहीं करेगा क्या उसका नाना मस्ती करेगा? हुजूर नमाज पढ़ते थे, बच्चे यहाँ कर बैठ जाते थे, यहाँ हुजूर सजदे में से नहीं उठ रहे हैं, फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में। तो एक साहबी कहने लगे कि मैंने देखा बहुत लंबा सजदा हो गया, तो मैंने सर उठाकर देखा क्या बात है हुजूर क्यों नहीं उठ रहे, तो देखा बच्चे आकर बैठ गए नवासा, तो मैंने यहां किया उतारू, तो हुजूर ने चालू नमाज में कहा नहीं इसको बैठे रहने दो। हाँ अपनी नवासी हजरत उमामा को यहाँ बिठाकर बाजार लेकर जाते थे, बाजार और बाजार का गश्त करते थे। कैसा लाड़ प्यार देने की औलाद होती है। और यहाँ जाती है स्कूल गया था नहीं गया था, अरे भाई ट्यूशन गया था कि नहीं गया था? अभी अभी एक तुर्की में थे, हमारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग हैं, बड़े पड़ोस के मुल्क के, वो वहां शिफ्ट हुए हैं, तो वो हमारा नाश्ता लेकर आ गए। तो उनको बच्चा छोटा सा था, तो उसको किसी ने पूछा, वो बैठे थे नाश्ते पर, तो उन्होंने कहा ये बच्चा क्या करता है? छह एक साल का था। तो तू मुझे ये पूछता है बच्चा क्या करता है? अल्लाह मैंने 7 साल तक तो नमाज का कहने का नहीं कहा, तू मुझे पूछता है क्या करता है? हमारे तो पैदा भी नहीं हुआ 3 साल के, वो केजी लटका देते हैं, फिर वो हमको लटका देता है, अभी उसको लटका दो फिर वो हमको लटका देगा। वो बच्चे ने प्यार नहीं देखा, 7 साल तक तो उसको नमाज तक कहने को अल्लाह ने नहीं कहा, और हम अभी 3 साल का देखो कौन सी केजी ने कौन सी एजी ने बेजी करते हैं, देख लो अब सत्या नाश कर दिया। और ये जितने भी हैं कोई केजी वगैरह के हैं, और सब माशाल्लाह अपने हुनर में मास्टर है सब। अभी तो हमारा 34 साल, उसको न अम्मी का प्यार मिला न अब्बा का प्यार। अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 साल तक तो नमाज का मत कहो, 7 साल के बाद नमाज का कहो। तो वो बुजुर्ग बैठे थे, वो कहने लगे तुम मुझे ये पूछता है क्या करता है? 7 साल तक तो अल्लाह ने नमाज का कहने को नहीं कहा, तो क्या कहना चाहता है? हाँ हमने लोगों के देखा देखी जीवन को तंग कर दिया, और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये नंबर आज से कामयाब हुए तो कामयाब हो गए, वरना हमारे बच्चे ने अपना भविष्य खराब कर दिया। हमारे अक्सर की माएं एक चौपड़ी दो चौपड़ी तीन चौपड़ी बढ़े लिए है, आप सर्वे करके देख लो, और उन्होंने आप जैसे अच्छे औलाद पैदा कर दी, और जो बढ़े ले आज है मॉडर्न कल्चर के, उन्होंने कैसे औलादे पैदा की वो भी देख लो। ये तकवे से ताल्लुक रखता है। हम ये नहीं कहते स्कूल मत भेजो, मदरसे ना भेजो, उसके उसूल में उसके दायरे में रहकर सब चीजें करो। घर में जाती है टॉर्चर बच्चों पर, तो उसमें हम में और बच्चों में नफरत हो जाती है, तो हमारे रवैये ठीक करें। एक बुजुर्ग फरमा रहे थे तुम्हारे बच्चों के जूते तुम्हारी साइज के हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा बेटा बेटा नहीं दोस्त है, दोस्त बनाकर संभाल लो, वरना मस्जिद के बाहर बहुत सारे लोग हैं वो दोस्त बनाकर बच्चों को बर्बाद कर देंगे। इन बच्चों को हम बर्बाद न करें, इनको दोस्त बनाकर हम संभाल लें। इसलिए बच्चों के साथ हमारे रवैये अच्छे और हमारी घरवालियों के साथ हमारे रवैये अच्छे, उसको अपनी फिक्रों में शरीक, फिर उसके साथ घर के माहौल अच्छा बनाओ। घर का माहौल दिन भर मोबाइल का माहौल है, हम जब चाहें तब घर में मोबाइल, जब चाहें घर में मोबाइल को न चलाओ। हम मोबाइल में होंगे, बीवी मोबाइल में, बच्चा मोबाइल में होगा। मर्दों को तो हुक्म है घर का माहौल बनाने के लिए नफल नमाजें घर में पढ़ो, नफल नमाजें घर में, नफल इबादत घर में। अल्लाह के नबी सलाम सारे नफली अमाल घर में करते थे सिवाय इशराक के, इशराक हुजूर मस्जिद में पढ़कर जाते थे, वरना सारे नफली अमाल घर में करते थे। घर में अमाल का माहौल बनाओ, बच्चे देखा देखी दीनदार बन जाएंगे। हमारा घर गंदगी का माहौल बन गया, जब जाए तब थोड़ी देर के लिए घर में गए, एक तो टाइम पर नहीं गए, रात देर से गए, ईशा के बाद का वक्त घर वालों का है। हुजूर खातमुन नबीयीन ने रोजाना घर वालों को टाइम देते थे, और हम अपने घर वालों को टाइम नहीं देते हैं। घर वालों को हम टाइम दें। जिस वक्त घर में जाए मोबाइल बंद कर दें, तालीम का हल्के के उसमें तालीम कर लें, अमाल घर में करें, वो बच्चे इस माहौल का अच्छा असर लेंगे। तो अपने घर का माहौल बनाएं, घर वालों को टाइम दें, ईशा के बाद फौरन चले जाएं, और सुबह में उठने का माहौल बनाएं। आप देखो आपके बच्चे बुजुर्ग बन जाएंगे, इस फितनों के माहौल में हमारी नस्ल संभल जाएगी। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इस माहौल में हमारे बच्चों को कोई नहीं समझ सकेगा। इसलिए अपनी फिक्र करें, अपने घर वालों की फिक्र करें, एक अपनी औरत को अपने साथ फिक्रों में शरीक कर लें, तो इंशाल्लाह हम संभलेंगे, हमारा घर संभल जाएगा, और ये 2.5 घंटे की मेहनत के जरिए से हमारे मोहल्ले संभल जाएंगे, और अपना गश्त दूसरा गश्त और तीन दिन के जरिए से हमारा अतराफ और हमारे अतराफ के देहात बंजर देहात समझ जाएंगे। तो इंशाल्लाह जिस दिन हम दुनिया से जाएंगे हम भी बने हुए होंगे, हमारी औलादे हमारे पीछे बनी हुई होगी और इंशाल्लाह हम अपने पीछे इतना अच्छा काम वाले लोग छोड़कर जाएंगे, प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों को ऐसे माहौल छोड़कर जाएंगे कि जिस दिन हमारा जनाजा उठेगा ना तो लोग हमारे पीछे रोने वाले होंगे कि हमारा हमदर्द चला गया, हमारा खैरखा, इंसानियत से हमदर्दी करें। देखो वली कोई बन जाता है ना तो वली को तो सारे दोस्त बनाते हैं, ये उठांग पटांग जितने भी हैं उनको दोस्त बनाने की चीज है, ये बेचारे ये कसमपुरुष लोगों को दोस्त बनाने की चीज है। मौलाना इलियासा फरमाते थे बहैसियत मुसलमान के हमें उसकी इज्जत करना आ जाए कि वो ऐसा ही है उसी की इज्जत करो, बुजुर्ग बनने के बाद तो सब इज्जत करते हैं, इस मुसलमान की सहल में इज्जत कर रहे हैं। अगर तुमने ये कर लिया, अगर मस्जिद से जुड़ गए तो समझ जाएंगे, घर में मेहनत कर ली तो घर समझ जाएगा, मोहल्ले में मेहनत कर ली तो मोहल्ला समझ जाएगा, और दूसरा गश के जरिए से अतराफ के मोहल्लों में मेहनत कर लो, अतराफ के मोहल्ले समझ जाएंगे। तीन दिन के जरिए से हमारे इन बंजर बस्तियों में जा जाकर हम मेहनत करें तो दो तरफ का फायदा होगा, हमारे अंदर ताजगी आ जाएगी और हमारे देहात समझ जाएंगे। और तीन दिन के जरिए से फिर उसके बाद चिल्ले में जाओ, चार महीने में जाकर हिंदुस्तान का सफर करो और पूरी दुनिया के, तो इंशाल्लाह हमारे जरिए से पूरी दुनिया में वायरिंग हो जाएगा और पूरी दुनिया में खैर फैल जाएगी और माहौल बन जाएगा। जब तक जिएंगे अच्छा माहौल मिलेगा और इंशाल्लाह जिस दिन इन फिक्रों के साथ जाना हुआ तो इंशाल्लाह मरना अच्छा हो जाएगा, अच्छी हाल में मरेंगे। गुजिश्ता साल में अहमदाबाद के इज्तिमा में थे, एक आदमी का रात में इंतकाल हो गया, 40 साल का जवान, उनका दोस्त मेरे पास सुबह आया और कहने लगा पता है मौलवी साहब इसकी कैसे मौत हुई। मैंने कहा नहीं, कहीं कार का कारीगर था, कार का कारीगर तो सबकी अमानतें जो थी सबके देकर आया और बीवी से कहा देख मैं तो अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ, जिंदगी रही तो ठीक बताए जन्नत में मिलेंगे, यूँ बीवी को कहकर आया। फिर उसके बाद पूरे दिन भर तशकीलें की, सबको मेहनत में मशगूल किया और रात में उठा और नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ते पढ़ते वो मेरे ऊपर कुछ गिरा, तो मैंने आंख खोली कि कौन है, तो देखा कि वो जो मेरा दोस्त मेरे पास सोया हुआ था वो मेरे पास गिरा, तो मैं एकदम उठा तो वो सीने को यूं कर रहा था कुछ हुआ है, तो डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर यूं पंप मार रहा था, तो उसने कहा पंप मारने की जरूरत नहीं, तुम भी कलमा पढ़ो मुझे भी कलमा पढ़ाओ, और कलमा पढ़ते पढ़ते अल्लाह को जा मिला। अगर अच्छा मर रहा है तो जीना अच्छा कर दो, अगर जीना अच्छा हो गया तो इंशाल्लाह मजे के मरेंगे। तो हम अपने जीने को अच्छा बनाने के लिए इस माहौल में अपने आप को रखें, इसको एक्स्ट्रा चीज ना समझे तबलीग की मेहनत को कि बरकत की चीज है, सवाब की चीज है, एक्स्ट्रा चीज है। अरे भाई बरकत और सवाब तो मिलेगा ही, ये तबलीग हमारी हिफाजत कर लेगी, हमको साचा लेगी, हमारी नस्ल को संभाल लेगी, हमें संभाल लेगी, इसलिए जी चाहे न चाहे उसके आप अपने आप को लगा के रखो। भाई गाड़ी में बैठ गए, अब वो गाड़ी स्टेशन पर पहुंचेगी तो उसमें जितने पैसेंजर बैठे हैं सारे पहुंचेंगे, चाहे गाड़ी धीमी गति की हो वो स्टेशन पर पहुंचा देगी। ये अल्लाह का दीन जन्नत में जा रहा है, ये गाड़ी जन्नत में जा रही है, धीमी गति से भी बैठ गए तो जब गाड़ी जन्नत में पहुंचेगी तो हम भी इंशाल्लाह कहां पहुंच जाएंगे बोलो, जन्नत में। तो सब जाओगे इंशाल्लाह, तो सब नियत करो जी चाहे न चाहे इसको जमकर करेंगे, करोगे तो अल्लाह के रास्ते में जाकर यह सीखना है। और घर पर रहने के जमाने में अपने आप को मस्जिद से जोड़ो, घर का माहौल बनाओ, मोहल्ले का माहौल बनाओ, उसके लिए मैं पांच अमल है। अब हल्के वाइज बैठ जाओ और हल्के वाइज इसकी नियत कर लो, हल्के वाइज बैठो कि कौन अपने तीन दिन कब लगाएगा, और उसके अलावा अपनी तालीम के अजाइन करो, अपने अपने दोनों गश्तों के, अपने तीन दिन के, सारे अपने पांचों अमल के अजाइन करो जमकर, इंशाल्लाह बहुत बड़ी कमाई कम करके दुनिया से हमें जाना है। मौलाना उमर साहब फरमाते थे दुनिया से लोग चीजें कमा कर जाते हैं, हम इंसानों को कमा कर जाएंगे। अब हल्के वाइज बैठो और इरादा करो भाई भाई ये कहां जा रहे, थोड़ी देर रुक जाओ, अपने अपनी मस्जिद वालों के साथ बैठो, हल्के लगेंगे, उन हल्कों में बैठो और हल्कों में बैठकर अजाइन कर लो, हल्के वाइज बैठो।